जनशलाखया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज राम नवमी है, इसी दिवस पर श्री राम त्रेता युग में अयोध्या में प्रकट हुए थे। दोपहर के समय उनका आविर्भाव हुआ तो सारे विश्व में बल्कि सारे ब्रह्मांड में यह दिवस बहुत पावन दिवस माना जाता है। और राम कथा जो कि पिछले चार दिनों से चल रही है उसको आज जारी रखेंगे। आज मंदिर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं और आगे भी होंगे। कल कथा को विराम यहां दिया था कि भरत अपने तीन माताओं को साथ में लेके वशिष्ठ मुनि और अन्य ऋषियों को साथ में लेके और अपनी सेना को भी साथ में लेके चित्रकूट आ पहुंचे थे। भरत महाराज इस उद्देश्य से यहां आए थे कि वो श्री राम को वापस अयोध्या ले जाना चाहते थे। भरत के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत स्नेह था, आदर था और उनको बहुत दुख होता था जब कोई संशय करता था उनके उद्देश्यों पर। और बार बार वो लोगों से बताते कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं अयोध्या के राजगद्दी पर बैठो। इस पद का अधिकार तो श्री राम का है और केवल श्री राम का, और किसी का नहीं। 3 महीने बीत गए, अयोध्या में लौट के आए भरत। उधर चित्रकूट में निवास कर रहे थे सीता देवी और श्री राम के साथ, श्री लक्ष्मण जी के साथ श्री राम। और उन्होंने देखा कि आवाजें बहुत आ रही हैं। लक्ष्मण को ऊपर भेजा वृक्ष के ऊपर कि जाके देखो क्या हो रहा है। वहां भरत की सेना दिखाई पड़ी। और कल अंत में हम ये चर्चा कर रहे थे कि लक्ष्मण के मन में संशय उत्पन्न हुआ भरत के प्रति, परंतु श्री राम ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि लक्ष्मण को डांट दिया। फिर लक्ष्मण को पता चला कि वास्तव में भरत महाराज के उद्देश्य बड़े अच्छे थे, वो श्री राम को ही वापस ले जाना चाहते थे अयोध्या। तो काफी समय के बाद ढूंढते ढूंढते भरत महाराज आगे चले गए। वशिष्ठ मुनि से कहा कि अपनी माताओं को आप बाद में लेकर आइए, मैं आगे चले जाता हूं श्री राम को ढूंढने के लिए। अंततः वो पहुंच ही गए जिस स्थान में श्री राम निवास कर रहे थे। जैसे ही भरत ने श्री राम का दर्शन किया तो उनको हृदय में बहुत दुख हुआ और कहने लगे श्री राम से कि कितने दर्ददायक बात है कि आप जो कि राजमहल में रहने वाले थे आज यह वन में रह रहे हो, जटाएं दिख रही हैं और वलकल पहने हुए हो आप, कितने दुख की बात है और इसका कारण मैं ही हूं। और फिर वो दौड़ पड़े श्री राम को प्रणाम करने के लिए, परंतु पहुंच नहीं पाए, दुख के कारण वहीं पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। श्री राम ने बड़े स्नेह से भरत को उठाया, आलिंगन किया और वहां पर सांत्वना देने का प्रयास किया भरत को। भरत का हृदय वास्तव में स्नेह से इतना भरा था कि वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। श्री राम को भी अच्छा नहीं लगा ये देखकर कि भरत अब बहुत दुबले पतले हो गए हैं, तपस्या के कारण भोजन नहीं ग्रहण कर रहे थे। भरत ने भी वलकल आदि धारण कर लिया था जो वनवासियों के वेश होते हैं। तो भरत से श्री राम ने पूछा कि अवश्य तुम यहां मुझे ले जाने के लिए वापस आए हो, परंतु तुमने ऐसे अयोध्या की राज्य को क्यों त्याग दिया है, ऐसे वनवासियों के वेश को क्यों तुमने स्वीकार किया है, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। वैसे तब तक शत्रुघ्न, सुमंत्र, गुह आदि भी पहुंच गए, उनको भी आलिंगन कर लिया श्री राम ने। और फिर भरत से अनेक प्रश्न पूछने लगे श्री राम। प्रश्न तो क्या, प्रश्नों के माध्यम से वो भरत को उपदेश दे रहे थे और भरत के द्वारा सारे विश्व को उपदेश दे रहे थे, राजनीति का उपदेश। और ये सबक हम हमारे दैनिक जीवन में भी स्वीकार कर सकते हैं। हमारे व्यावहारिक जीवन में अनेक ऐसे नियम होते हैं, विधियां होती हैं, जिनका पालन हमें करना चाहिए संसार में सुखी रहने के लिए, परंतु विशेष करके जो राजनीति के क्षेत्र में होते हैं उनके लिए तो ये सारे नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनको राज्य की रक्षा करनी होती है, शत्रुओं से बच के रहना होता है। तो फिर श्री राम ने भरत से पूछा कि यहां पे हमारे पिता को छोड़कर क्यों आए हो, पिता तो वहां अयोध्या में है, अब वो अकेले पड़ गए होंगे तो उनका देखभाल करना चाहिए था, हमारी माताएं तो सब ठीक ठाक है ना, हमारी प्रजा भी सुखी है, मैं ऐसे आशा करता हूं। मैं ये भी आशा करता हूं कि तुम अपने राजगद्दी को खो नहीं गए हो। तुम अभी तक राजा हो ना, कोई और तो नहीं आया। और फिर एक के बाद एक और भी प्रश्न करते गए और वो कहने लगे कि जो राजा धर्म परायण होता है उसका राज्य समृद्धिपूर्ण होगा, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य आएंगे। तो हे भरत, तुम्हारे राज्य में क्या ब्राह्मणों की सेवा, भगवान की सेवा अच्छी तरह से हो रही है? क्या महिलाओं को, स्त्रियों को सम्मान दिया जा रहा है? क्या उनकी रक्षा हो रही है? क्या जो तरह तरह के झगड़े आदि होते हैं उनमें बिना पक्षपात किए निरपेक्षता से निर्णय लिया जाता है? क्या सभी को न्याय अच्छी तरह से दिया जाता है? क्या जो राजा के कमजोरियां होती हैं उनसे तुम दूर हो? तो राम भरत से कहते हैं कि राजा के 14 कमजोरियां होती हैं। तो कौन से वो कमजोरियां हैं? वो कहते हैं कि राजा को नास्तिक नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो आजकल प्राय जितने भी राजा हैं वो राजगद्दी पर बैठने के लिए योग्य नहीं है। सबसे पहले तो राजा को आस्तिक होना चाहिए, अर्थात भगवान के शरणागत होना चाहिए, धर्म परायण होना चाहिए राजा। फिर राम कहते हैं, क्या वो छल कपट से मुक्त है? क्या क्रोध से मुक्त है? क्या वो सही समय पर सही चीज करता है? दूसरे शब्दों में, क्या वो बातों को टालते रहता है? आज जिस बात को करनी चाहिए कहता है कि कल करूंगा, कल जो करना चाहिए तो परसों करेंगे। क्या ऐसे उसके लक्षण होते हैं? क्या तुम इस कमजोरी से तो मुक्त हो ना? क्या तुम आलस से मुक्त हो? राजा को बहुत क्रियाशील होना चाहिए। आलस, बातों को टालना, ये सब तमगुण के लक्षण होते हैं। और राजा तो तामसिक नहीं हो सकता। फिर हे लक्ष्मण, क्या तुम इंद्रिय भोग से मुक्त हो ना? इंद्रिय भोग को तुमने नियंत्रण में रख लिया है। राजा को इंद्रियों के विषयों के गुलाम नहीं बनना चाहिए। विषय भोग भी नियमित रूप से सीमा के भीतर होना चाहिए। हे लक्ष्मण, क्या तुम अच्छे सलाह से दूर नहीं जाते हो ना? क्या तुम बुरे सलाहकारों से दूर रहते हो ना? साथ साथ में क्या तुम सदैव सतर्क रहते हो? और क्या तुम्हारे पास अच्छे मित्र हैं, या तुम अपने आप को बुरे मित्रों से घेर के रख रहे हो? क्या तुम धार्मिक क्रियाओं का पालन करते हो? अपने शत्रुओं को दूर रखने में समर्थ हो? यदि तुम ये सारी चीजें कर रहे हो तो फिर तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा। साथ साथ हे भरत, 8 प्रकार के मित्रों से क्या तुम दूर रहते हो? जो गलत प्रकार के मित्र होते हैं ना, ऐसे मित्रों के होते हुए शत्रुओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऐसे तथाकथित मित्र वो सारे कार्य संपन्न कर देते हैं जो कि शत्रुओं को करना चाहिए। समस्या ये होती है कि व्यक्ति उन लोगों को अपना मित्र मान बैठता है, फिर किस प्रकार के तथाकथित मित्रों को त्यागना चाहिए? पहले वो होते हैं जो कपटी होते हैं, हमें भी कल धोखा दे सकते हैं, विश्वास नहीं किया जा सकता ऐसे लोगों के ऊपर। दूसरे हैं जो बिना सोचे समझे जोश में आकर कोई न कोई कार्य कर बैठते हैं। व्यक्ति को कार्य करने के पहले सोच विचार करना चाहिए, यूं ही छलांग मार के कोई कार्य नहीं करनी चाहिए। विशेष करके जो राजा होते हैं उनको तो बहुत समझदारी से सोच विचार करके निर्णय लेने होते हैं। तीसरी बात, क्या वो हिंसक है? क्या वो ईर्ष्यालु है? क्या तरह तरह के प्रजल्प आदि करता है? अफवाहें फैलाता है, इसकी बातें उधर जाके कहना, उनसे उनकी बातें कहना, ऐसे लोगों से है भरत तुम दूर ही रहना। भले तुम्हारे कितने भी निकट के मित्र न हो, परंतु ऐसे लोग मित्र नहीं हैं। दूसरों के बारे में अफवाहें आके फैलाना, दूसरों की बुराई तुम्हें आके कहना, तो ऐसे लोग कभी भी तुम्हारी बुराइयां दूसरों के पास जाके भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। साथ साथ में क्या वो व्यक्ति न्याय के विरुद्ध कार्य करता है? क्या उसके मुख से अपशब्द निकलते हैं? सही मित्र वो है जिसकी भाषा भी शुद्ध हो और जिसके मुंह से अपशब्द न निकले। ये सारे लक्षण आजकल हम दुनिया में बहुत देखते हैं। आधुनिक समय में, आजकल के जमाने में लोग शुद्ध भाषा बहुत कम बोलते हैं। शुद्ध भाषा का मतलब केवल ये नहीं है कि व्याकरण आदि सही हो, उच्चारण सही हो, वो तो एक बात है। आजकल हमारी बंबई की भाषा कैसे हो गई है आप तो जानते ही हैं। परंतु कहने का मतलब है कि अपशब्द मुख से नहीं निकलने चाहिए। तो खैर, श्री राम ने भरत को ऐसे अच्छे उपदेश दिए और फिर आगे कहा कि देखो, 20 प्रकार के ऐसे राजा होते हैं जिनसे समझौता नहीं कर लेना चाहिए। फिर उनका वर्णन किया श्री राम ने। आगे और कहने लगे कि देखो, अनेक लोगों के साथ में रहने की आवश्यकता नहीं है। भले एक व्यक्ति हो तुम्हारे साथ में जो तुम्हें सलाह दे, जो तुम्हारा मित्र हो, परंतु वो सही व्यक्ति हो, वो विद्वान हो तो वो सही, इसके बजाय कि हजारों मित्र तुम्हारे पास हो जो मूर्ख हो। वैसे चाणक्य ने भी कहा है, एकश्चंद्रस्तमोहंती न च तारा सहस्रशः। चाणक्य नीति में कहा जाता है कि एक चांद हजारों तारों से अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक चांद रात्रि के अंधकार को नष्ट कर सकता है, परंतु हजारों तारे भी हों आकाश में, आसमान में, यदि चांद न हो तो रात के अंधकार को दूर नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, हमारे पास एक अच्छा मित्र हो तो वो हजारों ऐसे मित्रों से अच्छा है जो कि विद्वान न हो, बुद्धिमान न हो, सद्गुणों से संपन्न न हो, क्योंकि ऐसा एक मित्र हमारे कल्याण के लिए कार्य करेगा। ऐसे मित्र के संगति से हमारी भलाई होगी, परंतु दुष्ट मित्रों को साथ में रख के हमारी हानि बहुत होगी। तो राम ने ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे उपदेश दिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। प्रमुखतः शास्त्रों का उद्देश्य है कि हमें इस संसार के परे ले जाना, भगवान के धाम में पहुंचा देना। परंतु ये तो एक दिन की बात नहीं है। तो शास्त्रों में ऐसे भी बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। ऐसे भगवान और भगवान के भक्तों ने, ऋषि मुनियों ने मार्गदर्शन दिया हुआ है समाज के लोगों को कि आध्यात्मिक परिपूर्णता की प्राप्ति करते करते व्यक्ति को इस जीवन में, इस संसार में रहना पड़ता है। तो व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए संसार में, इसके बारे में भी बहुत जानकारी शास्त्रों में है। तो श्री राम ने ऐसे अच्छे अच्छे उपदेश भरत को दिए और फिर वो कहने लगे कि देखो, 3 प्रकार के लोगों को कभी भी पास में नहीं लेना चाहिए, उनको दूर ही रख लेना चाहिए, क्योंकि यदि वो उनको पास में रखोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या है, कौन है वो 3 लोग? एक है ऐसा वैद्य जिसकी विशेषता है कि वो आपके रोग को बढ़ाता है, अर्थात रोग का निवारण करने के बजाय वो रोग को बढ़ाते रहता है। ऐसी भी हिंदी में कहावत है, नीम हकीम खतरे जान, आपने सुना होगा कि ऐसे गलत व्यक्ति के पास जाएंगे तो जान खतरे में आ जाएगी। तो सही वैद्य को चुनो। दूसरी बात कहते हैं कि यदि कोई ऐसे सेवक हो जो इस बात पर तुला हुआ है कि मेरे मालिक का नाम खराब करूंगा, मालिक की बदनामी करूंगा, तो ऐसे सेवक को भी त्यागना चाहिए। साथ साथ में ऐसे भी कोई योद्धा हो हमारी सेना में जो स्वयं राजा बनना चाहता है, तो ऐसे योद्धा को भी त्याग देना चाहिए। तो ऐसे अच्छे अच्छे उपदेश देने के बाद श्री राम के हृदय में भी भरत के प्रति बहुत स्नेह उत्पन्न हुआ। और ऐसे तुम क्यों आए हो भरत यहां पे, तुम्हें राज्य में ही रहना चाहिए था, यह ऐसे तुम्हें इस वेश में देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भरत कहने लगे कि हे राम, मैं तुम्हें आपको बताना चाहता हूं कि ये जो षड्यंत्र रचाया गया मेरी मां के द्वारा, उसमें मैं शामिल नहीं था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी मां ऐसे कुछ करने वाली है। मेरे सपने में भी मैंने कभी ऐसे विचार नहीं किया है कि मुझे राजगद्दी पर बैठना है। राजगद्दी के बैठने का अधिकार आपका और केवल आपका है, इसलिए मैं यहां आपसे निवेदन करने आया हूं, आपके चरणों में प्रार्थना करने आया हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र आपके मोबाइल फोन बंद करें। और साथ साथ भरत ने राम से ये नहीं कहा, ये हमने आपसे कहा। और उन्होंने कहा शीघ्रातिशीघ्र आप अयोध्या लौट के आइए। देखिए, जब शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बताएं कि एक पुराण है जिसके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा, उसको मोबाइल पुराण कहते हैं। जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णन है कि ये कार्य करने से इस गति की प्राप्ति होती है, ये नरक प्राप्त होता है, भागवत में भी है, तो ऐसे मोबाइल पुराण में भी वर्णन है कि कथा के समय मोबाइल बजने से क्या गति होती है व्यक्ति की। तो इसलिए कृपया इस मोबाइल पुराण को भी आप जान लीजिएगा, भगवान की कथा के समय केवल भगवान की कथा ही सुननी चाहिए। तो खैर, तो भरत कहने लगे कि अयोध्या में सारे काम रुक गए हैं, कोई भी अपने अपने निहित कार्य नहीं कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के निहित कार्य होते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं कार्य ऐसे कर रहे हैं। फिर भरत ने श्री राम के चरण कमलों को अपने हाथों में पकड़ लिए और अपना मस्तक, अपना सर जो है वहां झुका लिया। श्री राम ने उठाया और आलिंगन किया भरत से और कहा कि हे भरत, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम इसमें शामिल नहीं थे, परंतु मुझे पाप के द्वारा राज को स्वीकार नहीं करना है, और वैसे भी अपनी माता को ऐसे धिक्कारना नहीं, क्योंकि हमसे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं सदैव। उनका पूरा अधिकार होता है कि वो हमसे किसी भी तरह से व्यवहार करें, इसलिए हमारे बुजुर्गों के प्रति कभी भी ऐसी गलत भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल समाज में ऐसी परिस्थिति हो गई है कि लोगों को अधिकारियों के प्रति, किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में भी क्यों ना हो, जो व्यक्ति अधिकार के पद में है, ऐसे व्यक्ति के अधिकार को लोग नहीं मानते हैं। अधिकारियों में श्रद्धा विश्वास बहुत कम हो चुका है लोगों में, और जब एक मर्यादा नहीं रहती है अधिकारी व्यक्तियों के प्रति, तब सारा समाज नष्ट हो जाएगा। सारे विश्व में ऐसे देख रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय में हो, पाठशाला में हो, अध्यापक के प्रति एक सम्मान होना चाहिए, घर में अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान होना चाहिए, हमसे जो आयु में बड़े हैं इत्यादि, उनके प्रति एक सम्मान की भावना होनी चाहिए। तो ऐसे एक मर्यादा नहीं रहने के कारण समाज में बहुत उत्पात अभी पैदा हो चुका है। तो भरत कहने लगे कि नहीं, बात तो यह है कि अनेक पीढ़ियों से प्रथा यह चलती आई है कि परिवार में जो सबसे वरिष्ठ पुत्र हैं उन्हीं का अधिकार होता है राजगद्दी पर बैठने का, इसलिए आपको शीघ्रातिशीघ्र यहां लौट के आना चाहिए। और राजगद्दी को स्वीकार करना चाहिए। बातों बातों में भरत ने समझा दिया कि देखो अभी हमारे पिता भी नहीं रहे, तो इसलिए आप तुरंत लौट के आइए। श्री राम को पता नहीं था दशरथ महाराज के देहांत के बारे में। जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी, हृदय पे बहुत धक्का पड़ गया, शोक ग्रस्त हो गए, गिर पड़े वहीं पर बेहोश होकर। फिर भरत, शत्रुघ्न आदि ने उनको जागृत कराया फिर से, और मंदाकिनी गंगा नदी जो कि पास में थी वहां जाके अपने पिता के श्राद्ध आदि, तर्पण आदि के कार्य उन्होंने किए। फिर वापस आए, वहां उस श्राद्ध के समय में भी जो सारी घटनाएं हुई वो भी वाल्मीकि मुनि काफी विस्तार में वर्णन करते हैं। तो खैर, जब वो लौट के आए तो तब तक वशिष्ठ मुनि कौशल्या देवी, कैकेयी देवी और सुमित्रा देवी को साथ में लेकर आए थे, साथ साथ उनकी सेना भी वहां पर आई। जैसे ही श्री राम ने अपनी माताओं को देखा तो बड़े सम्मान पूर्वक उनके पास गए, उनके चरणों को छुआ। वैसे माताओं ने श्री राम की इस दशा को देखी, वलकल आदि जटाएं भी थीं, देख के बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए। और भरत कहने लगे कि अब मेरी माता कैकेयी बहुत पछता रही हैं हे राम, कि उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया, इसलिए आप लौट के आइए। तो श्री राम ने उत्तर दिया कि भरत देखो, कोई स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता है इस दुनिया में। हम सब भाग्य या अपने प्रारब्ध आदि के अधीन रहते हैं। इस दुनिया में देखा जाता है कि कई चीजें, कई से लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ियां टुकड़े होते हैं, वो समुद्र में कभी लहरों के आधार पर आके मिल जाते हैं, फिर लहरें उन्हें इधर तितर कर देती, बिखरा देती हैं। ठीक उसी प्रकार से हम सब इकट्ठे आते हैं, हम दूर चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारे भाग्य हैं, हमें वैसे वैसे चलना चाहिए। देखो भरत, एक बार नदी चल जाती है अपने स्रोत से, अपने उद्गम स्थान से, नदी वहां लौट के नहीं आ सकती, नदी आगे बढ़ते जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी जीवन में आगे बढ़ते रहना है। हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग दिखलाया है उसी मार्ग में हमें चलना है। हम धर्म के विरुद्ध कभी नहीं चल सकते। जो हमने वचन हमारे पिता को दिया था उसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। सत्य के पथ पर चलना ही व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। और फिर भरत कहने लगे, लेकिन हे राम, हमारे पिता तो पथ भ्रष्ट हो गए थे, केवल काम वासना से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसे गलत निर्णय लिया था। तो जब ऐसे कोई गलत निर्णय लिया जाता है तो अवश्य उसको ठीक करना चाहिए। तो यदि आप अयोध्या वापस लौटोगे तो पिताजी ने जो किए हुआ गलत निर्णय है उसको आप ठीक कर दोगे। तो राम ने कहा कि हे भरत, पिताजी ने काम मोहित होकर यह निर्णय नहीं लिया। शायद तुम्हें पता नहीं है कि जब हमारे पिताजी का विवाह माता कैकेयी से हुआ था, उस समय उन्होंने राजा कैकेयी को वचन दिया था कि कैकेयी के पुत्र को ही राजा वो बनाएंगे। तो वचनबद्ध थे वो, उनके हाथ में दूसरा का उपाय नहीं था। बल्कि दशरथ राजा इतने धर्मपरायण थे, वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने ऐसे किया। खैर, आपस में भरत और इनके बीच में चर्चा चलती रही। उधर जाबाली नाम के एक ऋषि थे। अब देखिए, अयोध्या के जितने भी निवासी थे, चाहे वो ऋषि हो, ब्राह्मण हो, साधारण नागरिक भी क्यों ना हो, वो चाहते थे कि किसी भी किसी तरह से श्री राम को वापस ले आना चाहिए। ये न केर प्रकार, जैसे भी कोई तर्क करके, वाद करके, रो के राम को वापस ले आना चाहिए। तो जाबाली नाम के एक ऋषि थे जो वशिष्ठ मुनि के साथ में यहां चित्रकूट में आए थे। तो वो कहने लगे कि हे राम, देखो मैं तुम्हें कोई अच्छे सिद्धांत बता रहा हूं। इस दुनिया में सत्य क्या है? सत्य क्षणभंगुर है, और हम सब कौन हैं? ये सब आत्मा आदि की चर्चा क्या है? न आत्मा है, न यहां कोई परम सत्य है, केवल हमारा जन्म होता है और एक शरीर हमारा है। शरीर से अतिरिक्त और कुछ है नहीं इसमें। शरीर की इंद्रियां ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। इंद्रियों को संतुष्ट करना ही जीवन का सुख है और इससे बढ़कर कुछ और नहीं है। कल क्या होगा क्या जाने। तो शास्त्र में क्या लिखा है ये आत्मा वगैरह की बातें ये भूल जाओ, क्योंकि इंद्रियों को सुख देना ही जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे लिए राज सारा राज है, सभी लोग निवेदन कर रहे हैं आके राज का भोग करना। वैसे जवाली ऋषि जान बूझ कर चार्वक वाद कर रहे थे। चार्वक मुनि की का नाम आपने अवश्य सुना होगा। चार्वक मुनि का सिद्धांत क्या है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनरागमनो भवेत। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, वैसे ऋण ले लो या चोरी करो डकैती करो कुछ भी करो, लेकिन घी के पदार्थ खाओ। घृतम पिबेत, घृत मतलब घी। जो घी से बनाया हुआ भोजन होता है वो बहुत स्वादिष्ट माना जाता है, ऐश्वर्यशाली भोजन माना जाता है। अर्थात जो ऐश का जीवन है, ठाट का जीवन है, उसमें हमें घी से बनाए हुए भोजन खाने चाहिए। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियोगे सुख से जियो, ऐश करो मौज करो भोग करो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य, जब इस शरीर का अंत होगा तो फिर क्या होगा? किम पुनरागमनो भवेत, इसके बाद में किसने देखा है कि कोई अगला जन्म है भी या नहीं? आत्मा को किसने देखा है, किसने जाना है? ये शरीर ही सब कुछ है। तो ये चार्वक मुनि का सिद्धांत है। चार्वक मुनि के अनेक शिष्य और अनुयायी आजकल हैं। जीवन में बहुत सारे अनुयायी हैं, बल्कि चार्वक मुनि चुनाव में खड़े होते तो बस चुनाव जीत जाते आसानी से। तो राम तो तुरंत समझ गए कि ये तो बहुत गलत सिद्धांत है, क्रोधित हो गए, डांटने लगे कि आप जो कह रहे हो, आप तो ऋषि के वेश में हो, लेकिन जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल अनैतिक है, अधार्मिक है, बल्कि पाप के वचन आप कह रहे हो। धर्म के मार्ग से कभी भी व्यक्ति को हटना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति केवल इंद्रिय भोग के लिए जिएगा उसका जीवन व्यर्थ है, पशुतुल्य है ऐसे व्यक्ति का जीवन। तो जैसे ही राम ने ऐसे उस ऋषि को डांट दिया तो जवाली ऋषि ने हाथ जोड़ के कह दिया, वास्तव में राम मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं आस्तिक हूं, लेकिन क्या करे, ये न केड़े प्रकार आपको वापस ले जाना है, किसी न इस तर्क से नहीं तो उस तर्क से, इस वाद से नहीं तो उस वाद से, किसी न किसी तरह से आपको वापस आने के लिए हम प्रेरित करना चाहते हैं। तो फिर वशिष्ठ मुनि वहां पास में थे, वो कहने लगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं राम शांत हो जाओ, लेकिन देखो तुम वापस लौट के आओ, क्योंकि इक्ष्वाकु राजा के वंश में यह प्रथा सदैव रही है कि वरिष्ठ पुत्र ही राजा बनता है, और पहली बार ऐसे होगा कि जो वरिष्ठ पुत्र नहीं है वो राजा बनेंगे। इसलिए ऐसे इस पुरानी प्राचीन परंपरा को तोड़ना नहीं, तुम आना अवश्य वापस, और देखो मैं तो कुलगुरु हूं, और गुरु का स्थान जो है वो माता पिता के स्थान से भी बढ़कर होता है, तो गुरु के आदेश का पालन करना अनिवार्य है तुम्हारे लिए। बल्कि गुरु के आदेश में और माता पिता के आदेश में कोई भेद यदि हो तो गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। तो तुम्हारी माता कैकेयी ने और तुम्हारे पिता दशरथ महाराज ने तुम्हें आदेश दिया था वन में जाने के लिए, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि वापस चलो। तो प्रभु रामचंद्र ने फिर भी बात नहीं मानी कि जो मैंने वचन दिया है उसको तो मुझे पूर्ण करना ही चाहिए। वैसे बलि महाराज की कथा तो आप सब जानते ही हैं। जब भगवान वामन देव के रूप में आए थे, उन्होंने 3 कदम जमीन मांगी थी दान में, और बलि महाराज ने खुशी से तथास्तु कह दिया था। तो शुक्राचार्य जो उनके कुल गुरु थे, वो सामने आए, कहने लगे, होशियार, खबरदार, बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि ये व्यक्ति साधारण कोई बटु ब्रह्मचारी नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है जो तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए आए हैं। ये देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए असुरों का नाश करने के लिए आए हैं। और वैसे भी देखो, ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि जब हम कोई वचन देते हैं, यदि वचन देते समय हम ओम शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं, तो फिर हम उस वचन से बद्ध नहीं होते हैं, हम मुक्त होते हैं। जैसे कभी कभी आजकल देखा जाता है ना, यदि हम कोई समझौता कर रहे हैं व्यापार में किसी के साथ, उसमें स्टैंप नहीं लगा हुआ है या दस्तखत नहीं है, तो ठीक है, फिर ये रद्द किया जाता है, इस समझौते का कोई अदालत में मूल्य नहीं होता। तो वैसे एक तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो शुक्राचार्य जो बोल रहे थे कि देखो, ओम शब्द का उच्चारण नहीं किया तो अब तुम्हारा कोई बंधन नहीं है। लेकिन बलि महाराज ने कहा कि नहीं, यदि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, मेरे पास आए हैं, तो मेरा अहोभाग्य है, तो मैंने वचन तो दे दिया है उनको, मुझे तो पूर्ण करना चाहिए। तो बलि महाराज ने अपने कुल गुरु के वचनों को भी त्याग दिया। दूसरे शब्दों में, गुरु वो होते हैं जो हमें भगवान के निकट ले जाएं। यदि गुरु ऐसे कोई बात बोलते हैं जो कि हमें भगवान की भक्ति से, भगवान के पद से दूर ले जाए, तो फिर वो कैसे गुरु होंगे, वो गुरु नहीं है। तो ऐसे तथा कथित गुरु को त्याग देना चाहिए। यहां भी श्री राम ने जान लिया कि वशिष्ठ मुनि भी ऐसे ही किसी न किसी तरह से उनको वापस ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे बातें बोल रहे हैं, तो श्री राम ने भी उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। राम डटे रहे। भरत ने शत्रुघ्न से कहा, सुमंत्र से कहा, जो कि उनके साथ में आए थे, कि हे सुमंत्र, आप यहां श्री राम की कुटिया के सामने कुछ घास आदि फैला दीजिए, मैं यहीं पे बैठूंगा और मृत्यु तक मैं उपवास करूंगा। तो सुमंत्र श्री राम के आदेश के बिना कुछ नहीं कर पाए, तो स्वयं भरत ने कुछ घास आदि वहां पर बिखार दिया और फिर बैठ गए वहीं पर। तो श्री राम कहने लगे कि हे भरत, अब ऐसा कष्ट क्यों दे रहे हो, मैंने तुम्हारे प्रति क्या अपराध किया है कि तुम मेरे धर्म के पथ में ऐसे कांटे बन गए हो। दोनों भाइयों के बीच में संवाद चलता रहा काफी समय तक। देवलोक से इस संवाद को सुनने के लिए अनेक देवतागण आए, वो सब अदृश्य अवस्था में थे, कोई लोग देख नहीं सकते थे, उनको प्रशंसा करने लगे, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे दोनों भाइयों का, विशेष करके भरत महाराज का। और फिर आगे चल के जब देवताओं ने भरत से कहा कि भरत, अब अपने बड़े भाई श्री राम की बात मानो, देवताओं ने ऐसा क्यों कहा, वो थोड़े बहुत चिंतित भी हो गए थे। अब भरत जिस तरह से बात कर रहे हैं, यदि श्री राम का हृदय पिघल गया, बात मान गए, तो बड़ी समस्या हो जाएगी, राम वापस अयोध्या चले जाएंगे और उधर रावण का वध कौन करेगा फिर। और ये सारी लीला हुई है ताकि राम यहां दक्षिण में जाएं, रावण का वध करें, और ये सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देवता आए वहां पर, भरत से कहा, ठीक है मान लो बात, श्री राम की बात। तो जब भरत ने समझ लिया कि और कोई उपाय नहीं है, तो फिर उन्होंने पादुकाएं ली जो साथ में ले आए थे और श्री राम से कहा कि आप इन पादुकाओं को पहन लीजिए अभी। तो राम ने पहन लिए और फिर लौटा दिए भरत को, और भरत ने कहा कि राज सिंहासन के ऊपर मैं इन पादुकाओं को रखूंगा और इनकी उपासना करूंगा, और राज तो ये आप करेंगे इन पादुकाओं के द्वारा, मैं तो इनकी सेवा मात्र करूंगा। और साथ साथ में राम ने आश्वासन दिया भरत को कि मैं 14 वर्षों में निश्चित ही लौट के आऊंगा। भरत तुम बिल्कुल संशय नहीं करना। भरत ने जाते जाते कह दी, यदि आप नहीं आओगे तो मैं तुरंत प्राण को त्याग दे दूंगा। श्री राम ने पुनः आलिंगन करके आश्वासन दिलाया भरत को कि नहीं, मैं निश्चित ही लौट के आऊंगा 14 वर्षों के बाद। फिर वहां भरत, वशिष्ठ मुनि आदि जितने भी लोग अयोध्या से आए थे वो सब चित्रकूट छोड़ के चले गए। पुनः भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए, वहां पर बैठे। वशिष्ठ मुनि ने श्री राम की पादुकाओं को दे दिया भरद्वाज मुनि को और कहा कि इनमें ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए किसी एक विशेष क्रिया या अनुष्ठान के द्वारा, ताकि ये पादुकाएं अयोध्या के निवासियों की रक्षा कर सकें। तो एक अनुष्ठान बनाया गया, भरद्वाज मुनि ने क्रियाएं ऐसे कर दी और फिर वहां से सब निकल पड़े। जब अयोध्या में पहुंचे उन्होंने देखा कि अयोध्या ऐसी थी जैसे मानो सारा शहर खाली हो चुका है। लोग उदास इधर उधर बैठे हैं, किसी के चेहरे पर कोई सुख नहीं दिखाई पड़ रहा था और भरत और भी शोकग्रस्त हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं नंदीग्राम में जाऊंगा। तो मंत्रियों ने उनके निर्णय की प्रशंसा की कि यह बहुत अच्छा निर्णय आपने लिया है। फिर पादुकाओं की स्थापना हुई वहां पर और वहीं से भरत राज्य किया करते थे। और जो भी निर्णय होते थे, जो भी बातें होती थी राज्य की, वो आके पादुकाओं को सुनाते थे। कभी कभी ऐसे भी देखा जाता था कि पादुकाओं के ऊपर वो कभी छत्र तो कभी चामर आदि की सेवा भी किया करते थे। ऐसे समय बीतता गया और केवल इन पादुकाओं के अपने प्रतिनिधि समझ के वो राज के कारोबार को संभाल रहे थे। ये आजकल की दुनिया से कितनी दूर की बात है। आज लोग कुर्सी के लिए कितना आपस में झगड़ते हैं, कोई व्यक्ति कुर्सी को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि आजकल ऐसी परिस्थिति है कि कोई राजगति को छोड़ना नहीं चाहता जब तक कि कोई उसे गोली से उड़ा नहीं देता। ऐन वक्त पर ऐसे वृद्ध अवस्था में भी शरीर भी काम नहीं कर रहा है, मन भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, फिर भी अपने राजगति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान की प्राप्ति करना जीवन का उद्देश्य है। रामायण में दूसरी जगह बताया गया है कि जो नेता होता है, जो राजा होता है, उसे प्रजा का एक छठाई भाग या आधा भाग अपने सर पर स्वीकार करना होता है। तो कल्पना कीजिए कि प्रजा में जितने भी लोग पाप कर रहे हैं, जितने भी पाप का बोझ है, उसका हिस्सा राजा को अपने सर पर लेना पड़ता है, तो उसकी गति क्या होगी? यदि राजा इतना आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं है तो फिर उसकी दशा क्या होगी? नरक ही तो जाना होगा उसे। यदि हमारे नेता लोग ये सब जान लेते कि उनकी दशा क्या होगी, क्योंकि आज के समाज में इतना पाप चल रहा है कि यदि वो जान लेते, उनको विश्वास होता कि इतना सब पाप प्रजा का हमारे सर पे आएगा तो कोई चुनाव में खड़ा नहीं होता। परंतु उनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, अंधे हो गए हैं, आध्यात्मिक दृष्टि तो है नहीं, केवल वो अभी कुर्सी के और ऐश्वर्य के चमक धमक से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि किसी भी हालत में उनको कुर्सी चाहिए। तो ऐसे कुर्सी प्राप्त करने से क्या लाभ है? प्रहलाद जी भी भागवत में बताते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः अंधा यथांधे माना तेपी शितम त्रयाम उरु दामनि बद्धाः। वो कहते हैं, अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिता, ऐसे दुनिया के लोग हैं वो बिल्कुल अज्ञान में है, उनको पता नहीं है कि जीवन की गति वो भगवान विष्णु हैं और अपना स्वार्थ भगवान विष्णु के शरण ग्रहण करने में है। स्वार्थ शब्द का विश्लेषण यदि किया जाए तो हम देखेंगे कि ये दो शब्दों से बना हुआ है, स्व और अर्थ। अर्थ मतलब लाभ, हित। तो अपना हित जो जानता है वो भगवान की भक्ति करेगा, लेकिन हम अपने आप को स्व, अपने आप को जब हम शरीर समझते हैं तो हम सोचते हैं कि भोग करना ही इसी में हमारा सच्चा स्वार्थ है। परंतु जब हम जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तब हम जान जाएंगे कि हमारा हित वास्तव में भगवान की भक्ति करने में है। तो ऐसे अपना हित क्यों नहीं जानते हैं लोग? दुराशया ये बही अर्थ मानिना है, दुराशाएं उनके मन में है, संसार के विषयों को बहुत मूल्यवान मानते हैं, प्राप्त करने योग्य मानते हैं कि इनको यदि मैं प्राप्त कर लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। इसलिए ये दिल मांगे मोर, और चाहिए हमें ताकि हम सुखी हो जाएं। लेकिन वो कहते, प्रहलाद जी कहते हैं कि ये लोग नहीं समझते कि प्रकृति के कड़े नियमों के द्वारा सभी लोग बंधे हुए हैं। यहां तक कि जो नेता हैं वो तो अंधे हैं ही, अंधे नेता अंधे प्रजा को आगे ले जा रही है, दोनों की नारकीय गति ही निश्चित है। एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक अंधा व्यक्ति आगे चलते हुए जा रहा है और उसने दूसरे अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ा हुआ है, और दूसरे अंधे व्यक्ति ने तीसरे अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ा हुआ है, और ऐसे कई अंधे व्यक्ति एक के बाद एक चल रहे हैं, लेकिन आगे सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति भी अंधा है और सामने बिल्कुल एक बहुत गहरा गड्ढा है। तो आगे जो होना है वो आसानी से हम जान सकते हैं कि क्या होना है, सब गड्ढे में गिरने वाले हैं। तो समाज की दशा ऐसे है क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि किसी की नहीं है, विशेष करके राजाओं की, यथा राजा तथा प्रजा। तो प्रजा की भी दशा ऐसी है। तो खैर, भरत महाराज ने इस तरह से राज करना शुरू कर दिया और श्री राम वहां चित्रकूट में रहने लगे। उधर चित्रकूट में उन्होंने देखा कि ऋषि मुनि जो हैं वो थोड़े चिंतित लग रहे हैं, तो ऋषियों के पास गए श्री राम और कहने लगे कि आप सब बहुत चिंतित लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे वजह से आपको कोई कष्ट हो रहा हो? मेरे यहां रहते हो, मैं क्षत्रिय हूं, मेरे पत्नी के साथ, मेरे भाई के साथ आप सबके बीच में रह रहा हूं, आपकी तपस्या में कोई, आपकी साधन भजन में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है हमारे कारण? तो ऋषियों ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे चिंता का कारण ये है कि यहां पे ऐसे कोई राक्षस हैं जिनके नेता खर हैं। खर ये रावण नाम के राक्षस के छोटा भाई है ये, और बीच बीच में यहां आया करते हैं ये लोग और हमारे यज्ञ आदि यज्ञ स्थली को बिल्कुल दूषित कर देते हैं, हैरान करते हैं हमें। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम यहां से कहीं दूर चले जाएं। तो हम किसी दूसरे जगह में जा रहे हैं और वहां पे जाके हम अश्व मुनि के आश्रम के निकट कहीं जाके रहेंगे। तो हे राम, यदि आप हमारे साथ में आना चाहते हो तो अवश्य आप भी आइए, हमारा सौभाग्य होगा। तो श्री राम ने कहा कि नहीं, मैं यहां चित्रकूट में ही रहूंगा। और फिर वो मुनिगण सब चले गए। उधर श्री राम थोड़ी देर चित्रकूट में रहे, लेकिन बाद में भरत की यादें उनको सताने लगी, क्योंकि भरत वहां आए थे, भरत के प्रति स्नेह बहुत था श्री राम के मन में। तो यहां भरत के साथ वार्तालाप हुआ था तो उन्होंने सोचा कि यहां रह के मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, मुझे किसी दूसरे स्थान में जाना चाहिए। फिर वहां से वो निकल पड़े और चलते चलते फिर अत्रि मुनि के आश्रम में चले गए। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया थी, दोनों ने श्री राम सीता और लक्ष्मण का प्रसन्नता से स्वागत किया। अनसुया देवी ने सीता देवी को अच्छे उपदेश दिए, विशेष करके पतिव्रता स्त्री के कैसे कर्तव्य होते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने पति की सेवा की है अनसुया देवी ने बताया। सीता देवी ने ये सारे उपदेश अच्छी तरह से ग्रहण किए। फिर अनसुया देवी ने सीता से कहा कि मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं। तो सीता देवी ने कहा कि आपके आशीर्वाद की बस हम प्रतीक्षा करते हैं और हमें कोई और इच्छा नहीं है। फिर भी अनसुया देवी ने एक दिव्य वस्त्र और एक दिव्य फूलों की माला प्रदान की सीता देवी को, और फिर वहां से आगे श्री राम निकल गए। और जब जाते जाते दंडक में वो जाना चाह रहे थे तो अत्रि मुनि ने उनको चेतावनी दी कि देखो दंडक अरण्य में बहुत सारे खतरनाक राक्षस रहते हैं जो मनुष्यों को खा भी जाते हैं और बहुत हैरान करते हैं मनुष्यों को, तो आप जरा सावधान रहना वहां पे। तो श्री राम ने कहा ठीक है, हम सावधान रहेंगे, और आगे चल के दंडकारण्य में वो प्रवेश कर गए। इसके साथ में अयोध्या कांड की समाप्ति होती है और वाल्मीकि मुनि अब अरण्य कांड का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही दंडकारण्य में प्रवेश किया श्री राम ने, उन्होंने देखा कि बहुत रमणीय स्थान था, जगह जगह सुंदर कुटियां दिखाई पड़ रही थी एक के बाद एक, जहां ऋषियां मुनियां मुनिजन रह रहे थे। इन मुनियों ने श्री राम का स्वागत किया, उनको रहने के लिए भी स्थान दिया कुटिया में, वहां एक रात रहे, फिर आगे चले गए किसी दूसरे मुनि की कुटिया में गए। इस तरह से काफी समय बीत गया और ऐसे चलते चलते अचानक उन्होंने देखा कि एक भयंकर राक्षस बीच में आ गया है। उस राक्षस का नाम था विराध और दिखने में बड़ा कुरूप भयानक था। जब ये राक्षस आया सामने, अचानक उसने सीता देवी को छीन लिया। सीता देवी को छीन कर वो थोड़ी दूरी पर चला गया। श्री राम और लक्ष्मण जी वहां खड़े थे, अचानक आश्चर्यचकित हो गए देखकर, उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसे अचानक कुछ हो जाएगा। तो श्री राम ने कहा कि तुम कौन हो, कैसे तुमने मेरे पति का पत्नी का स्पर्श किया है, और तुम कैसे, तुम्हें साहस हुआ कि हमें रोक के हमारी पत्नी को ऐसे छीन लो। लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी इसी क्षण इस राक्षस की हत्या कर रहा हूं। लेकिन फिर विराध कहने लगा, मेरा नाम विराध है, मैं एक राक्षस हूं, मैं यहां निवास करता हूं और मुझे एक वरदान मिला है ब्रह्मा जी के द्वारा कि किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी हत्या नहीं हो सकती, इसलिए तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैंने सीता को लिया हुआ है, आप दोनों चले जाइए यहां से, मैं आपको कुछ करूंगा नहीं, केवल सीता देवी को मेरे पास छोड़ के चले जाइए। तुमने कहा बिल्कुल नहीं। तो वैसे श्री राम ने अनेक तीर वैसे छोड़ दिए, वैसे सीता देवी उसके हाथों से गिर पड़ी। सीता देवी राम के पास वापस आई, वो बेहोश तो हो गए थोड़े समय के लिए लेकिन मरे नहीं। फिर विराध पुनः होश में जब आया तो फिर से युद्ध, भीषण युद्ध दोनों के बीच में हुआ, लेकिन कोई असर ही नहीं पड़ा, बल्कि विराध ने श्री राम के तीरों को निगल लिया और ऐसे लग रहा था कि कोई फूलों की वर्षा उसके ऊपर हो रही है, इन अस्त्रों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। फिर सामने आके श्री राम और लक्ष्मण को विराध ने अपने हाथों में ले लिया, अपने कंधों में रख लिया और दौड़ते गए वन में। सीता देवी पीछे से चिल्ला रही थी कि इनको छोड़िए, आप मुझे ले जाइए। तो हालांकि श्री रामचंद्र और श्री लक्ष्मण जी भी बहुत प्रहार कर रहे थे, जोर जोर से प्रहार कर रहे थे इस राक्षस के शरीर के ऊपर, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि चलो इसके हाथ काट देते हैं। तो श्री राम ने एक हाथ काट दिया जबकि वो कंधे पे बैठे हुए थे, लक्ष्मण ने दूसरा हाथ काट दिया और वैसे ही वे दोनों गिर पड़े। और जब गिर पड़े और आक्रमण किया और बेहोश होकर गिर पड़ा वहां विराध, राम ने लक्ष्मण से कहा कि मैं यहां पहरा दे रहा हूं, शीघ्र ही तुम खुदाई करो, एक गड्ढा खोद लो यहां पे, क्योंकि अस्त्र शस्त्र से इसका वध नहीं हो पाएगा, इसे दफना देंगे यहां पे। इसी तरह से ही एक रास्ता है इसकी हत्या करने का। तो लक्ष्मण जैसे खुदाई कर रहे थे फिर से होश में आ गया विराध और कहने लगा कि अब मैं आपको पहचान रहा हूं, आप तो स्वयं भगवान हैं, आप स्वयं भगवान राम हैं, मैं आपको मेरी सही पहचान करा के दूं, मैं गंधर्व लोक में रहने वाला तुम्बुरु हूं और मुझे कुबेर ने एक श्राप दिया था क्योंकि मैंने कोई गलत काम किया था और इसलिए मुझे ये राक्षस का शरीर मिला है, लेकिन साथ साथ में कुबेर ने वरदान भी दिया था कि तुम इस श्राप से, इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाओगे जब भगवान श्री राम तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो अब समय आ गया है, तो हे श्री राम और लक्ष्मण, मैं तुम्हारे आपके अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, तो जल्दी से मुझे दफना दो यहां पे और मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। तो चीखते चीखते उस असुर को, उन्होंने राक्षस को उन्होंने अंदर डाल दिया और ऊपर से फिर वो मिट्टी आदि भरने लगे और फिर बड़े कठिनाई से उस राक्षस की हत्या हो गई और उसका उद्धार भी हो गया। तो ऐसे श्री रामचंद्र ने विराध का उद्धार किया और फिर जाते जाते उस विराध राक्षस ने एक आदेश दिया या एक निवेदन किया राम से कि आगे जाइए, यहां से बहुत पास में ही 2-3 योजन दूर में शरभंग ऋषि रहते हैं, आप उनके पास जाइए और अच्छे आपको मार्गदर्शन वहां से मिलेंगे। तो श्री राम लक्ष्मण और सीता देवी विराध की हत्या करने के बाद शरभंग ऋषि के आश्रम में चले गए और पहुंचते पहुंचते उन्होंने देखा एक अद्भुत दृश्य। दृश्य क्या था कि देवराज इंद्र अपने रथ के ऊपर सवार होकर वो बातचीत कर रहे हैं शरभंग ऋषि से और थोड़ी दूरी पर एक दूसरा रथ आकाश पथ से होकर आ रहा है शरभंग ऋषि के आश्रम में। जैसे ही इंद्र ने श्री राम को देखा वहां से निकल गए, तो श्री राम आए शरभंग ऋषि के सामने, उनको प्रणाम किया। शरभंग ऋषि ने कहा कि स्वागत है आपका हे राम, वैसे मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो राम ने पूछा शरभंग ऋषि से कि इंद्रदेव जो कि देवराज हैं वो आपके आश्रम में क्यों आए थे? तो उन्होंने कहा कि मैंने अनेक वर्षों से यहां तपस्या की है और अब मेरे ब्रह्मलोक जाने का समय हुआ है। तो कितनी तपस्या की होगी उन्होंने याद कल्पना कीजिए, क्योंकि ये केवल स्वर्गलोक की बात नहीं है, स्वर्गलोक से भी ऊंचा है ब्रह्मलोक। भू भुव स्वर्ग, ऊपर से फिर जनलोक, तपलोक, महरलोक, फिर सत्यलोक जो कि ब्रह्मलोक है। तो जितना ऊंचा लोक होता है उतना कठिन होता है उस लोक की प्राप्ति करना, और जो बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं वही ऐसे ऋषि होते हैं जो इन ऊपरी लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो शरभंग ऋषि ने कहा कि अब मेरा समय हुआ है ब्रह्मलोक जाने के लिए, तो इंद्रदेव मुझे लेने आए थे और ये रथ है मुझे ले जाने के लिए आए हैं, परंतु मैंने इंद्रदेव से कहा कि मैं श्री राम की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जब यहां श्री राम आएंगे मैं राम का दर्शन करूंगा, फिर मैं मेरे प्राण को त्याग के ऊपरी लोकों में जाऊंगा। तो अब आप आ चुके हो, मेरा जीवन सफल हो चुका है हे राम। तो फिर उन्होंने राम ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि मैं कहां जाके निवास करूं दंडकारण्य में। उन्होंने कहा पास में यहां सुतीक्ष्ण ऋषि निवास करते हैं, उन्हें जाके आप ये प्रश्न कीजिए। और फिर उन्होंने एक अग्नि स्थापित कर दी और शरभंग ऋषि उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए और तुरंत उनके देवी शरीर में वो ब्रह्मलोक चले गए उस रथ में। और श्री राम लक्ष्मण सीता देवी ने प्रणाम किया उनको। तो ऐसे आगे चलते हुए वो सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां पे सुतीक्ष्ण ऋषि को भी पता था कि श्री राम आने वाले हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि ऋषि मुनियों के समाज में बात तो फैल गई थी कि श्री राम वनवास में गए हैं, चित्रकूट में आए हैं, चित्रकूट छोड़कर अब दंडकारण्य में आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पर निवास कीजिए हे राम। तो श्री राम ने कहा कि नहीं, आज एक रात रहूंगा, इसके बाद में मैं निकल पड़ूंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, मैं कभी शिकार करता हूं और हरिण आदि की हत्या करने से आपके यहां सात्विक और शुद्ध वातावरण भंग हो जाएगा। तो मैं यहां दंडकारण्य के विविध आश्रमों में मैं भ्रमण करूंगा और फिर लौट के आपके आश्रम में पुनः आऊंगा। तो जब वहां से निकल पड़े, सुतीक्ष्ण ऋषि के आशीर्वाद प्राप्त करके, तो सीता देवी ने कहा श्री राम से कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। आपको तो पता है कि व्यक्ति के जीवन में तीन बहुत बड़े पाप होते हैं। पहला पाप है झूठ बोलना। दूसरा बहुत बड़ा पाप है किसी दूसरे के पत्नी के साथ संबंध रखना। और तीसरा बहुत बड़ा पाप है हिंसा करना, विशेष करके मासूम प्राणियों के प्रति। जहां तक पहले दो बातें हैं, इनका गंध भी आपके जीवन में नहीं है। ऐसी चीजों से तो आप सदैव दूर ही हैं। परंतु तीसरी बात जहां तक है, ये धनुष आपके हाथ में है, आप पशुओं की हत्या शिकार में कभी ऐसे करते हो, तो इससे बहुत हानि होगी। इसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूं। फिर कहने लगे कि एक ऋषि थे जो बहुत तपस्या कर रहे थे। आप तो जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अधिक तपस्या करते हैं तो इंद्रदेव चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि तपस्या करने से व्यक्ति को बहुत शक्ति मिलती है और ऊंचा पद भी मिलता है। ऐसा भी संभव है कि उसे इंद्रदेव का पद भी मिल जाए, तो इंद्रदेव को भी अपने पद की चिंता रहती है। तो इंद्रदेव वहां पर आए, उन्होंने सोचा कि किसी न किसी तरह से इस ऋषि को अपने तपस्या के पद से भ्रष्ट कर देना चाहिए, इनका ध्यान आदि भंग करना चाहिए, इनकी चेतना दूषित करनी चाहिए। तो कभी कभी देवताओं के मन में भी ऐसे द्वेष के विचार आ जाते हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी देवताओं से श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के। और भक्ति करते करते भी हमारे हृदय में अन्यों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या आदि उत्पन्न हो, तो हमें जानना चाहिए कि ये हमारे भक्ति के लिए बहुत बाधक हैं। शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में तब उदित होगी जब हम निर्मत्सर होंगे पूरी तरह से, द्वेष ईर्ष्या किसी से नहीं करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में व्यास जी कहते हैं, धर्म प्रोज्झित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। वो कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत में अन्य जितने भी धोखेबाजी के धर्म है उनको त्याग दिया गया है। धोखेबाजी के धर्म कौन से होते हैं? वो धर्म होते हैं जिसमें कोई स्वार्थ होता है। जब हम कुछ चाहते हैं भौतिक, हमारी सेवा पूजा तपस्या आदि के बदले में, तब वो धोखेबाजी का धर्म है। सही धर्म तो वो होता है जिसे भागवत धर्म कहते हैं, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता व्यक्ति का। न वो इस संसार का कोई भोग चाहता है, न वो निराकार ब्रह्म में लीन होने की इच्छा रखता है, यहां तक कि मुक्ति भी नहीं चाहता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रार्थना की है अपने शिक्षाष्टक प्रार्थना में, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितुकी त्वयि। कि हे प्रभु, मैं ना तो धन चाहता हूं, न सुंदर स्त्रियों को चाहता हूं, न मैं अनुयायी चाहता हूं, मैं केवल जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति चाहता हूं। तो ये भक्ति वास्तविक भक्ति है, वास्तविक धर्म है। तो खैर, इस तरह से श्रीमद् भागवत में निर्मत्सर शब्द का प्रयोग किया गया है, निर्मत्सराणाम सताम। ये भागवत धर्म उन लोगों के लिए है जो निर्मत्सर हैं, मात्सर्य की भावना उनके हृदय में नहीं है, या कम से कम ये भागवत धर्म उन व्यक्तियों के लिए है जो निर्मत्सर होना चाहते हैं। तो कभी कभी देवताओं में भी ऐसे मात्सर्य की भावना दिखाई पड़ती है। तो इंद्रदेव ने आके उस ऋषि को एक तलवार दे दी कि हे ऋषि, आपसे मैं निवेदन करता हूं, मैं थोड़े काम से यहां आया हूं, और जब तक मैं लौट के न आऊं, क्या आप इस तलवार को अपने पास रखेंगे सुरक्षित? तो अपने पास ही रखिएगा, कहीं रखिए नहीं, कोई उठा के ना ले जाए इसे, सदैव आपके पास रखिए, ये मैं निवेदन करता हूं आपसे। तो कपटी स्वभाव है, ऐसे ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रदेव के मन में विचार कुछ अलग था। तो उन्हें कहा कि ये तलवार को हमेशा रखिए आपके साथ। तो ऋषि ने कहा ठीक है। तो जब भी ऋषि जाते थे कहीं दूसरे वन में जगह में, इधर उधर जाते थे, तो तलवार को साथ में ही लेकर जाते थे। अब 24 घंटे तलवार उनके साथ में रहा करती थी, क्योंकि तलवार 24 घंटे उनके साथ में थी, धीरे धीरे से उस ऋषि के मन में परिवर्तन आने लगा। जो ऋषि पहले बिल्कुल अहिंसा के पथ को स्वीकार कर रहे थे, जिनका मन कितना कोमल और शुद्ध था, अब धीरे धीरे से उनके मन में हिंसा के विचार आने लगे, क्योंकि तलवार साथ में था। और फिर सीता देवी ने वर्णन किया कि आगे चल के ऐसा समय आया कि उस ऋषि के मन में इतनी हिंसा की भावना उत्पन्न हो गई कि वो हिंसक बन गया, और यहां तक कि ऐसे पाप करने लगे वो ऋषि कि उनको बाद में नरक जाना पड़ा। फिर सीता देवी ने कहा कि जिस तरह से उस ऋषि के साथ हुआ, आपके साथ नहीं होगा, परंतु आपको सावधान रहना चाहिए। उस ऋषि ने केवल इंद्रदेव के तलवार का संग किया, और उस तलवार के संग करके इतना परिवर्तन उनकी चेतना में हो गई, लेकिन आपके पास ये जो धनुष है ये इतनी शक्तिशाली है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। पशु हत्या आदि करने के लिए आप आगे इतना आगे नहीं बढ़िए। तो श्री राम ने बहुत अच्छी तरह से इन उपदेशों को ग्रहण कर लिया और कहा कि हे सीते, तुमने जो मुझे अच्छे उपदेश दिए हैं, मैं उन हृदय से ग्रहण करता हूं, और मैं जान सकता हूं कि तुम मेरे शुभ चिंतक हो, क्योंकि हमारे वास्तव में शुभ चिंतक ही होते हैं जो इस तरह के उपदेश हमें दे सकते हैं, अन्यथा और कौन ऐसे दे सकता है। फिर आगे वो वन में चलते गए। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जैसा संग वैसा रंग, इस बात को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि हम बुरे लोगों का संग करते हैं तो हमारी चेतना बिगड़ जाती है। ये तो बात सर्वविदित है। माता पिता भी अपने बच्चों के बारे में चिंतित रहते हैं कि कहीं उनको गलत संग न मिल जाए, गलत बच्चों का संग न मिल जाए। परंतु केवल गलत व्यक्तियों की बात नहीं है, गलत वस्तुओं की बात भी है। जैसे उस ऋषि ने केवल एक तलवार का संग किया, शुरुआत में उसका प्रयोग भी नहीं किया, केवल अपने साथ में रखा, फिर भी कितना प्रभाव हुआ। ठीक उसी प्रकार से ऐसे कई वस्तुएं हैं दुनिया में जिनका कोई भक्ति से संबंध नहीं है, केवल ऐसे चीजों को अपने साथ में रहते हुए कितना प्रभाव पड़ जाता है। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। ये संग का सिद्धांत जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो श्री राम फिर आगे चले, और चलते चलते एक सरोवर में आए, और वहां पे मंदकर्णी नाम के एक ऋषि रहा करते थे। तो वहां पे जब वो आए तो उस सुंदर सरोवर मैं देखा कि बहुत संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है, मधुर संगीत है, लेकिन आसपास में कोई लोग दिखे नहीं। ऐसे लग रहा था कि जल के भीतर से यह संगीत आ रहा है। तो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पास में रहने वाले ऋषियों से पूछा कि यह संगीत कहां से आ रहा है। तो ऋषियों ने कहा कि इस स्थान का नाम है पंचाप्सरा कुंड। यहां पे मंदकर्णी नाम के एक ऋषि रहा करते थे और उन्होंने बहुत तपस्या की। तो उनके तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने 5 अप्सराओं को भेजा। तो ये अप्सरा गण जब यहां पे आ गई तो ऋषि की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने 5 अप्सराओं को स्वीकार किया और उनके साथ में जल के भीतर रहने लगे। और जल के भीतर ये 5 अप्सराएं उस ऋषि के मनोरंजन के लिए हमेशा ऐसे मधुर संगीत अपने वाद्यों से उत्पन्न करते रहती हैं। तो ये संगीत हम अब सुन रहे हैं। तो ऐसे पंचाप्सरा कुंड से आगे चलते चलते ऐसे वो भ्रमण करने लगे। पूरे 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष ऐसे घूमते घूमते फिर वो आए सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पुनः। सुतीक्ष्ण ऋषि से श्री राम ने कहा कि हमने सुना है कि अगस्त्य मुनि भी यहां पर पास में कहीं रहते हैं, हम उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो सुतीक्ष्ण ऋषि ने कहा कि बहुत अच्छा प्रस्ताव है और उनको रास्ता बताया अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचने के लिए। तो जब अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे, मुनि बहुत प्रसन्न हुए, उनका स्वागत किया। वहां जाते जाते श्री राम ने लक्ष्मण को अगस्त्य मुनि के बारे में बहुत कथाएं बताई, वातापी और इलवल का वध कैसे उन्होंने किया इत्यादि। अगस्त्य मुनि कहने लगे, हे राम, मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहां पर आज आए हो। स्वागत करके उन्हें कंदमूल फल आदि दिए। बहुत मीठे शब्दों ने अगस्त्य मुनि ने श्री राम से संवाद किया। श्री राम को अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए अगस्त्य मुनि ने, जैसे भगवान विष्णु का धनुष है और अनेक ऐसे अक्षय तीर हैं। और ऐसी चर्चा करते करते फिर अगस्त्य ऋषि ने सीता देवी की प्रशंसा करना शुरू किया कि ये सीता देवी विरला ही इस दुनिया में ऐसे कोई स्त्री मिलती है जो अपने पति का साथ ऐसे कठिन परिस्थिति में भी देती है, इसलिए मेरा पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। अगस्त्य मुनि वहां रहने लगे, रह रहे थे काफी समय से। जब श्री राम ने अगस्त्य ऋषि से पूछा कि मेरे निवास करने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है, तब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि पंचवटी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंचवटी अर्थात अब नासिक के पास में है। तो दंडकारण्य, ये चित्रकूट से चलते चलते दंडक वन से होते हुए वो पंचवटी जा रहे थे। अगस्त्य ऋषि की बात आती है तो हमें स्मरण आता है कि अगस्त्य, भृगु, ऐसे कई ऋषि हुए हैं जिन्होंने भविष्य में जो होना है उसके बारे में काफी कुछ जानकारी दी है। और विशेष करके आजकल दक्षिण भारत में, विशेष करके तमिलनाडु आदि में ऐसे कई लोग होते हैं जो अगस्त्य नाड़ी आदि कहते हैं। जैसे उत्तर भारत में भृगु संहिता के आधार पर वो भविष्य बताते हैं, तो दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि के जो पत्र हैं उनके आधार पर वो हरेक व्यक्ति का भविष्य बताते हैं, वो भूतकाल के बारे में भी जानकारी देते हैं। अगस्त्य ऋषि जब दक्षिण में गए थे तो दक्षिण से वापस ऊपर नहीं आ पाए, खैर वो कथा तो दूसरी है। परंतु मुझे एक घटना याद आ रही है, अनेक वर्षों पूर्व की बात है, अनेक करीब करीब 20 साल हो गए। हम मंदिर में थे उस समय, कोई काम से बाहर नहीं गए हुए थे। तो एक सज्जन आए मंदिर के अंदर, अमेरिका से आए। उनकी आयु करीब करीब 60 वर्ष की थी, तो बहुत दुखी लग रहे थे। तो क्योंकि हमें मिले वो मंदिर में, तो हमसे बात करने लगे। तो बात करते करते वो कहने लगे, मैंने पूछा कि आप यहां कैसे आए मंदिर में, कैसे ढूंढ निकाला आपने मंदिर में। तो कहने लगे मैं अमेरिका से आया हूं और मैं अगस्त ऋषि को ढूंढ रहा हूं। तो मैंने सोचा कि शायद हमारे संस्था के कोई भक्त तो होंगे, ऐसे किसी का नाम होगा अगस्त्य दास, ऋषि दास, ऐसे कुछ होगा, कोई पता नहीं। ने कहा रहते हैं, कोई वर्णन कीजिए, यहाँ तो ऐसे कोई नहीं। नहीं, नहीं, आपके मंदिर में नहीं रहते हैं, वो तमिलनाडु में रहते हैं। अच्छा, तो तब मुझे पता चला कि वो वही अगस्त ऋषि को ढूंढ रहे हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में है। अच्छा, तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई मन में कि अगस्त ऋषि को क्यों ढूंढ रहे हैं आप। तो कहने लगे कि हमारी माँ है, वो काफी वृद्ध थी, 90 वर्ष की आयु उनकी थी, उनका देहांत हो गया और उनसे मैं इतना आसक्त था कि उनके बिना मुझे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं बहुत दुखी हो गया हूं। इसलिए मैंने सुना कि अगस्त ऋषि मेरी माँ को जीवित कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूं। फिर मुझे भी थोड़ा संकोच हुआ कि अरे अपना समय ऐसे बिता बर्बाद कर रहे हैं, ये व्यक्ति घूम रहे हैं अगस्त ऋषि की खोज में। अगस्त ऋषि हैं अवश्य, इस समय भी हैं वो, परंतु ऐसे स्थूल आंखों से उनको देख नहीं सकते, हमारी योग्यता नहीं है। और ऐसे अगस्त ऋषि के पास जाकर ऐसे कोई वरदान मांगना, मृत्यु तो संसार का नियम है, हम में से हर एक को जाना होगा एक न एक दिन। इसके बजाय कि हमारे पूर्वजों को हम पुनः जीवित करने का प्रयास करें, उचित ये रहेगा कि हम ऐसी अपनी तैयारी करें कि स्वयं हम इस भवसागर से मुक्त होके जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएं। और साथ साथ प्रहलाद ने कहा भी है श्रीमद् भागवत में कि जब कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, भगवान का शुद्ध भक्त हो जाता है, तो उसके 7 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है आगे पीछे। केवल एक व्यक्ति के भगवान की शुद्ध भक्त बनने से 7 पीढ़ियां। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि ये 7 पीढ़ियां न केवल इस जन्म की हैं, लेकिन पिछले जन्म की और उसके पिछले जन्म की। तो 21 पीढ़ियां इस प्रकार से देखा जाए तो इनका उद्धार होगा एक व्यक्ति के शुद्ध भक्त बनने से। परिवार में कितने पूर्वजों का उद्धार हो सकता है यदि अनायास किसी कारणवश कोई पूर्वज नरक में भी हैं, इसलिए तो श्राद्ध आदि करते हैं ना, इसलिए तो पुत्र हैं, पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्र है। तो श्राद्ध आदि के द्वारा यदि कोई पूर्वज कहीं नरक में है तो उनको मुक्त कर सकते हैं, यही तो उद्देश्य होता है श्राद्ध का। परंतु प्रहलाद के उपदेश के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि भक्ति के पथ से अनेकों ऐसे पूर्वजों का उद्धार हो सकता है केवल भक्ति करने से। अलग से कोई और अनुष्ठान आदि करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है और आगे चल के शुद्ध भक्त भी हो जाता है, तो वो किसी दूसरे के ऊपर, विशेष करके उसके वंशजों के ऊपर निर्भर नहीं रहता है अपने उद्धार के लिए। ऐसा भक्त तो कभी नरक जाएगा ही नहीं, परंतु किसी कारणवश पुनर्जन्म लेना भी पड़ा तो किसी दूसरे के ऊपर वो व्यक्ति निर्भर नहीं होता है। भगवान की कृपा पर निर्भर होके अपने भक्ति के बल पर उसका उद्धार निश्चित है। इसलिए हमारा मूल्यवान मनुष्य समय हमें इन चीजों में नहीं बिताना चाहिए, बल्कि भगवान की भक्ति करके अपना उद्धार कर लेना चाहिए। तो अगस्त्य ऋषि के आश्रम को छोड़कर फिर वो पंचवटी की ओर गए। पंचवटी के रास्ते में चलते चलते उन्होंने जटायु को मिले। वो जटायु तो आप जानते हैं भगवान श्री राम के बहुत भक्त हैं, बाद में भी जटायु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है श्री रामलीला में। जैसा कि आप जानते हैं, जब रावण अपहरण करके ले जा रहे थे सीता देवी को, उस समय जटायु ने उनको रोक दिया। रोक के रावण और जटायु के बीच में युद्ध हुआ। जटायु उस समय वृद्ध थे काफी, इसलिए अधिक देर तक रावण का सामना नहीं कर पाए और जटायु का देहांत तो वहां पर हो गया। परंतु इसके पहले कि उन्होंने अपने प्राण त्यागे, श्री राम और लक्ष्मण वहां पे पहुंचे, पहले तो उनको गलतफहमी हुई, सोचा कि शायद इन्होंने ही सीता देवी का अपहरण किया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो जटायु है। और जटायु ने श्री राम के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करते हुए अपने प्राण को त्याग दिए, बताया कि रावण एक ऐसा दुष्ट राक्षस है जिसने सीता देवी का अपहरण किया है और वह दक्षिण की ओर चला गया है। तो खैर, पहली बार इस समय पंचवटी के रास्ते में जाते जाते श्री राम, लक्ष्मण और सीता देवी ने जटायु का दर्शन किया। जटायु ने कहा कि मैं आपके पिता दशरथ महाराज के बहुत निकट था। जटायु बहुत प्रसन्न हुए श्री राम को देखकर, दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ, प्रेम का आदान प्रदान हुआ और फिर पंचवटी की ओर निकल पड़े श्री राम। उधर पंचवटी में आ पहुंचे, बहुत सुंदर स्थान था, रमणीय स्थान था, प्रकृति का सौंदर्य अपार था वहां। एक दिन जब वो पंचवटी में ऐसे रह रहे थे तो एक राक्षसी आई जो दिखने में बहुत कुरूप थी। उसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा की कथा भी आप सब अवश्य जानते हैं। तो शूर्पणखा आके श्री राम के सौंदर्य से आकर्षित हो गई, कहने लगी श्री राम से कि आप इस सीता देवी को छोड़ दीजिए, आपकी पत्नी को छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ में आइए, हम यहां पे सदैव रमण करेंगे इस पंचवटी में, सुंदर स्थान में रह के। श्री राम हंस पड़े। श्री राम ने कहा कि मैंने तो एक पत्नी व्रत धारण किया है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, और साथ साथ लेकिन मजाक कर रहे थे कि मेरे भाई है यहां पर, ये बहुत योग्य वर है आपके लिए, तो लक्ष्मण के पास आप जाइए। तो थोड़ी भोली प्रकार की थी तो सीधे गई वो लक्ष्मण के पास कि ठीक है, आपके भाई को भूल जाए लेकिन आपके साथ हम आना चाहते हैं, आप हमारे साथ में आइए। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो मेरे भाई का दास हूं, मेरा जीवन में एक ही उद्देश्य है कि मैं राम की सेवा करूं, यदि तुम मेरे साथ में रहोगी तो तुम्हें भी सीता देवी की दासी बनना होगा तुम्हें, तो इसलिए ये ठीक नहीं होगा। तो उस समय शूर्पणखा ने सीता देवी की ओर देखा और राम ने लक्ष्मण से कहा कि अरे लक्ष्मण, तुम्हें ऐसे कुछ कहना नहीं चाहिए था जिससे कि सीता देवी को कोई खतरा आ जाए, अब ये तो सीता देवी को दोषी मान रही है। और फिर शूर्पणखा ने आक्रमण करना शुरू किया, आक्रमणात्मक भाव से वो सीता देवी के सामने आ गई। तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि ठीक है, कुछ करो लक्ष्मण। फिर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और दोनों कान काट दिए। चीखते चीखते शूर्पणखा वहां से भाग गई और अपने भाई खर के पास चली गई। खर और दूषण, इन दोनों का नाम तो आपने सुना है। तो खर के पास गई, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तुम किस तरह के भाई हो, देखो तुम्हारे बहन का किस तरह का अपमान हुआ है, प्रहार कैसे हुआ है मेरे ऊपर, और तुम यहां शांति से बैठे हो, माने को कुछ हुआ ही नहीं है। तो खर को बड़ा गुस्सा आया कि किसने ऐसे तुम्हारी दशा बनाई है, उसका नाम तो कहो केवल। तो फिर वर्णन किया शूर्पणखा ने श्री राम का, लक्ष्मण का, और कहा कि ये बहुत दोनों सुंदर हैं और यहीं पे पास में निवास करते हैं। वास्तव में उस स्थान का नाम था जनस्थान, पंचवटी में वो जनस्थान में है। तो खर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अभी तुरंत मेरे शक्तिशाली राक्षसों को भेजता हूं। तो अपने 14 राक्षसों को चुना जो बहुत शक्तिशाली थे और उनसे कहा कि जाओ ये नाम राम से निपटा लो, ये कौन है ये राम। ये 14 राक्षस गए वहां पर और श्री राम ने देखा कि अरे ये 14 राक्षस आ रहे हैं, लक्ष्मण जरा सीता देवी को ऊपर गुफा में ले जाना, वहां सीता देवी की रक्षा करना, संभालना, सीता देवी को कहीं छोड़ कहीं नहीं जाना, मैं इन राक्षसों से निपटा लेता हूं। तो जैसे ही वो राक्षस आए, बड़े क्रोधित अवस्था में थे, श्री राम ने 14 तीर छोड़े और इन 14 राक्षसों का वध कर दिया। जब ये देखा शूर्पणखा ने तो वापस चली गई खर के पास कि अरे अकेले राम ने इन 14 राक्षसों का वध कर दिया। तो खर को बड़ा गुस्सा आया, फिर खर अपने 14,000 राक्षसों के साथ में लेकर गया। ये पूरे 14,000 राक्षस वहां पंचवटी में रहा करते थे और सारे ऋषि मुनियों को वहां बहुत हैरान किया करते थे। तो वहां पर चले आए, जब श्री राम ने देखा कि अब 14,000 राक्षस आए हैं, पहले तो केवल 14 आए थे, तो वहां पर डट के खड़े हो गए। लक्ष्मण को चेतावनी दी कि कभी सीता को छोड़ना नहीं, अकेले वहीं पर रहना, मैं इन 14,000 राक्षसों को देख लेता हूं। और उस समय एक बहुत धुआंधार युद्ध हुआ। यद्यपि इन राक्षसों ने तरह तरह के अस्त्र आदि अस्त्रों का प्रयोग किया, फिर भी श्री राम को हानि नहीं पहुंची। यद्यपि उनका कवच भी टूट गया, कभी कभी उनके शरीर से खून भी निकलने लगा, फिर भी राम वहां से हटे नहीं। जो भी अस्त्र शस्त्र ये राक्षस फेंकते, उनका प्रतिकार श्री राम बड़े आसानी से अपने तीरों के द्वारा कर देते। ऐसे 1.5 घंटे बीत गए, कहीं बताया गया है कि 2 घंटे बीत गए, खैर 1.5 घंटे हो या 2 घंटे हो, लेकिन श्री राम ने इन 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। खर और दूषण ये 2 भाई थे, रावण के छोटे भाई थे, उनके साथ में और भी कई शक्तिशाली राक्षस थे जैसे त्रिशिर आदि। तो श्री राम ने खर और दूषण का वध इस तरह से कर दिया। खर दूषण का वध ये श्री रामलीला में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शूर्पणखा के बाद ही फिर रावण इधर चित्र में आ जाते हैं। इसके पहले तो रावण थे नहीं कहीं, क्योंकि शूर्पणखा ये रावण की छोटी बहन थी। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, तो शूर्पणखा ने देखा कि ये 14,000 राक्षस भी, मेरे भाई भी, इनकी भी हत्या कर दी राम ने, तो वो दौड़ती हुई रावण की ओर चली गई। तो खर दूषण का वध जो है ये बहुत प्रसिद्ध है। इन दोनों बहुत शक्तिशाली थे, रावण के भाई थे। जयदेव गोस्वामी भी अपने उज्जवल गीत में गाते हैं, जनक सुता कृत भूषण हे जित दूषण हे जित दूषण समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे। जयदेव गोस्वामी श्री राम की स्तुति करते हैं उज्ज्वल गीतम प्रार्थना में। जनक सुता कृत भूषण है, सीता देवी जो कि जनक सुता है उनके आभूषण है श्री राम। जित दूषण ए उन्होंने दूषण का वध कर दिया था, खर दूषण के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। तो ऐसे भगवान श्री हरि जो कि राम के रूप में आए हैं उनका जय हो। तो ऐसे अनेक स्तुतियां हैं श्री राम की, और खर दूषण का वध भी इनमें से रामलीला में से प्रमुख एक घटना मानी जाती है, क्योंकि जब रावण ने यह सुन लिया अकंपन के द्वारा, जो एक राक्षस था जो बच गया था 14,000 राक्षसों में, तो रावण ने सुन लिया अकंपन के द्वारा कि राम ने केवल 1.5 घंटों में या 2 घंटों में 14,000 राक्षसों का, और वो भी खर दूषण त्रिशिर आदि जैसे राक्षसों का वध किया है, तो रावण आग बबूले हो गए। अकंपन से कहने लगे कि हे रावण, आपके होते हुए आपके बहन का अपमान ऐसे हुआ, आपके भाइयों का वध ऐसे हुआ। तो रावण ने कहा, है कौन ये राम? लेकिन ये तो एक मनुष्य है मात्र, उसके भाई भी लक्ष्मण है, मनुष्य है। तो फिर रावण बड़ा चिंतित हो गया। उधर शूर्पणखा भी पीछे पीछे आ रही थी, रावण के दरबार में आके रो पड़ी। रोते रोते अपने भाई को धिक्कारने लगी, किस तरह के भाई हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि बहन की रक्षा करना भाई का कर्तव्य होता है, देखो मेरी दशा क्या हो गई। फिर रावण ने कहा, कहो तो सही, बात क्या है, हुआ क्या है, किसने तुम्हारी ये दशा कर दी? तो शूर्पणखा ने फिर सारी बातें बताई और शूर्पणखा ने सोचा कि रावण को उकसाने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है। शूर्पणखा ने कहा कि देखो, राम की बहुत पत्नी सुंदर है, वो केवल तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए। अब श्री राम इस योग्य नहीं है। तो सीता के सौंदर्य का वर्णन सुनने के बाद रावण की काम वासना उत्पन्न जागृत हो गई और रावण ने सोचा कि किसी न किसी तरह से दोनों काम एक साथ कर लेने चाहिए। राम ने जिसने ऐसे साहस की कि मेरे बहन का अपमान किया और मेरे भाइयों का वध किया, तो राम की हत्या तो करनी ही करनी है, साथ साथ सीता देवी का अपहरण भी करके ले जाना है। तो खैर, आगे चल के फिर कहानी का मोड़ काफी गहरा हो जाता है। यह महत्वपूर्ण घटना है शूर्पणखा का अपमान, क्योंकि यहीं से फिर राम कथा में एक मोड़ आ जाती है। यदि ऐसे ये घटना नहीं हुई होती तो बस और 3-4 साल बचे थे। इन 3-4 साल राम बड़े आसानी से ऋषि मुनियों के साथ इधर उधर बिताते, बहुत सुंदर स्थान में, और वापस चले जाते। तो देखिए, असुरों का, राक्षसों की भी भूमिका जो होती है भगवान की लीला में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो खैर, फिर शूर्पणखा ने भड़का दिया रावण को, रावण भड़क भी गए, और आगे भी बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन समय हमारे साथ नहीं है, क्योंकि समय अब हो चुका है। जब कथा की शुरुआत की, हम सोच रहे थे कि संक्षेप में वर्णन करते करते रामायण के अंत तक पहुंचे, परंतु ऐसे नहीं हो पाया है। तो अब हम अरण्य कांड के बस बीच के भाग में ही पहुंच गए हैं। अब अरण्य कांड का दूसरा आधा भाग बाकी है, जिसमें कि रावण फिर मारीच को प्रेरित करते हैं। प्रेरित तो क्या, धमकी देकर जबरदस्ती काम करवा लेते हैं। सोने के एक मृग के रूप में रूप अपने आप को परिवर्तित करने के लिए आगे चल के रावण अपहरण करते हैं सीता देवी का। जटायु के साथ युद्ध करता है रावण, जटायु को मिलते हैं राम और लक्ष्मण। आगे चल के सुग्रीव के साथ दोस्ती का प्रस्ताव रखते हैं, हनुमान जी वहां मिल जाते हैं। फिर किष्किंधा कांड शुरू होता है। वहां किष्किंधा में चातुर्मास के समय रहते हैं श्री राम। वानर सेना तैयार होने लगती है। वाली की हत्या भी श्री राम करते हैं, सुग्रीव को राजा बना देते हैं। फिर दक्षिण की ओर चलते चलते वो समुद्र के तट पे पहुंचते हैं, लेकिन इसके पहले ये ढूंढ निकालना होता है कि सीता देवी हैं कहां। तो अपने सेनाओं को अनेक दिशाओं में भेज देते हैं श्री राम। अनेक दल होते हैं, वो दल जो कि हनुमान जी के साथ में हैं, वो जान लेते हैं कि अब सीता देवी लंका में है, क्योंकि जटायु के भाई संपाति वो उनको बताते हैं कि मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि ऐसे पक्षियों की दृष्टि बहुत तेज होती है, कि सीता देवी वहां लंका में है। तो लंका में जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है। हनुमान जी समुद्र पार करते हैं, छलांग मार के लंका में तहस नहस कर देते हैं। आगे चल के हनुमान जी वहां छलांग मार देते हैं, छलांग मार के तहस नहस सारी लंका में करते हैं। वहां पे राम के प्रतिनिधि हनुमान जी को गिरफ्तार करने के लिए रावण बहुत प्रयास करता है। अंततः इंद्रजीत गिरफ्तार कर लेते हैं हनुमान जी को। वैसे हनुमान को पकड़ना तो इंद्रजीत के लिए संभव नहीं था। वैसे नागपाश, ब्रह्मास्त्र आदि, ऐसे ब्रह्मपाश आदि ऐसे कई अस्त्र इंद्रजीत के पास थे जो कि रावण के पुत्र थे। ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त इन अस्त्रों के साथ हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास किया इंद्रजीत ने। वैसे तो हनुमान चाहते तो सदैव मुक्त रहते, परंतु उन्होंने ब्रह्मा जी का मान रखना चाहा। आखिर ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, ब्रह्मा जी ने जब कोई वरदान दिया है तो उसे हमें ठीक रखना चाहिए। साथ साथ हनुमान जी ये भी जानना चाहते थे कि ये रावण है कौन, मैं रावण को भी देखना चाहता हूं। इसलिए अपनी इच्छा से वो पकड़े गए और ब्रह्मपाश के द्वारा फिर वो गिरफ्तार किए गए, रावण के दरबार में लाए गए। रावण के दरबार में रावण ने देखा पहली बार, अच्छा तो ये वानर है जिसने इतना तहस नहस कर दिया है सारे लंका में। रावण को बड़ा क्रोध आया, पूछा तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, दासोहम कोसलेन्द्रस्य रामस्य आक्लिष्ट कर्मणः। वो कहने लगे, दासोहम, मैं दास हूं। किनका दास हूं? कोसलेन्द्रस्य, कोसल प्रांत के राजा जिनका नाम है राम, रामस्य जो कि अक्लिष्ट कर्मणः, जो कि अपने कार्यों में कभी थकते नहीं हैं, ऐसे श्री राम का मैं दास हूं। तो बड़े शूरवीरता से घोषणा कर दी हनुमान जी ने, अपना परिचय दिलाया और फिर रावण जी, रावण ने कहा, रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने कहा कि हनुमान जी, हनुमान के पूंछ को आग लगा दो, क्योंकि ऐसे ही वानरों को दंड दिया जाता है। और जैसे ही आग लगा दिया गया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत छोटा कर दिया, छोटा करके उस पाश में से निकल पड़े। आपको याद होगा कि ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा था कि आप प्रकट हो जाना वानरों के समाज में, परंतु आपकी ये जो संतान होंगे आपके समान ही शक्तिशाली और बुद्धिमान होने चाहिए, कामरूपी होने चाहिए, अर्थात किसी भी रूप को स्वीकार करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए, अपने शरीर को छोटा बड़े करने की शक्ति या सिद्धि भी होनी चाहिए। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे छलांग मार के, उस समय भी वहां एक राक्षसी रास्ते में आई। हनुमान जी को अपने शरीर को बहुत बड़ा करना पड़ा था, क्योंकि बड़ा करने के बजाय के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। तो हनुमान जी ने उस समय अपना शरीर बड़ा किया था और इस समय पुनः शरीर को छोटा कर दिया और फिर निकल पड़े और फिर सारे लंका को उन्होंने जला डाला। और वापस सीता देवी से वो अंगूठी लेकर सीता देवी को सांत्वना देके वो श्री राम के पास लौट के आए। राम विश्वास नहीं कर रहे थे, परंतु जब अंगूठा उन्होंने वापस दे दिया तो फिर श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और आगे चलने की योजनाएं फिर बन गई। वैसे जब हनुमान की बातें आई हैं तो हनुमान के बारे में कुछ कहना आवश्यक है, क्योंकि राम कथा में हनुमान की कोई चर्चा न हो ये तो उचित नहीं है। वैसे हनुमान जी राम के आदर्श सेवक हैं। जहां श्री राम की बात आती है हनुमान जी की बात तो होनी ही चाहिए। भगवान कभी अकेले रहते नहीं हैं, भगवान के साथ में उनके भक्त रहते हैं। भक्त और भगवान के बीच में बहुत प्रेम का गहरा संबंध होता है। तो हनुमान जी दास्य रस में श्री राम की सेवा करते हैं। हनुमान जी का जन्म जब हुआ था किष्किंधा क्षेत्र में, तो बहुत शरारती थे, क्योंकि थे वायुपुत्र, पवन सुत हनुमान की जय आपने तो जय घोष तो सुनी ही होगी। जिस स्थान में उनका जन्म हुआ, एक पहाड़ के ऊपर, उस स्थान में अवश्य आप सब भी गए होंगे, पहाड़ में काफी ऊपर चढ़ना पड़ता है, अंजनेय पर्वत। उनकी माता का नाम था अंजनी, पिता का नाम था केसरी, परंतु वास्तव में हनुमान जी वायु पुत्र हैं, परंतु वायु भी नहीं, शिव जी के पुत्र हैं। वास्तव में शिव जी के वीर को वायुदेव ले आए अंजनी तक। इसलिए वैसे देखा जाए तो हनुमान जी के तीन पिता माने जाते हैं, शिव जी हैं, वायु हैं और केसरी हैं। तो हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो इतनी ताकत उनके शरीर में थी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार उन्होंने सूर्य को देखा और सोचा कि ये कोई बहुत अच्छा फल है, सेब की तरह दिख रहा है, तो छलांग मारी सूर्य को पकड़ने के लिए। अब वो चले जा रहे थे, अंतरिक्ष में से चले जा रहे थे बहुत तेज गति से, तो सारे देवलोक में सभी लोग चिंतित हो गए। इंद्र ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने अपना वज्र का प्रयोग किया और हनुमान जो उस समय बाल्यावस्था में थे उनको वापस भेज दिया। ये वज्र जो है उनको यहां हनु में लग गया, इसलिए उनका नाम है हनुमान। यहां थोड़ा भेद हो गया उनके हनु में। वो गिर पड़े तो बेहोश हो गए। वहां देवतागण आए, वहां पर वायु आए, क्योंकि वायु के पुत्र हैं। वायु देव ने सारी वायु ब्रह्मांड में रोक दी। जब वायु रुकी गई तो फिर कोई सांस नहीं ले पाया। जब सांस रुक गई तो सब लोग त्राहि त्राहि करके चले आए वायु के पास, कृपया आप अपने क्रोध को रोक लीजिए। तो सभी ने हनुमान जी को बहुत वरदान दिए, बहुत सारे आशीर्वाद आदि प्रदान किया। तरह तरह के वरदान मिले हनुमान जी को, कभी और इनका वर्णन आप किसी और भक्त से सुन सकते हैं। लेकिन ये सारे वरदान मिले, हनुमान जी और भी शक्तिशाली हो गए और अपनी बाल लीला करते करते जब आसपास में जितने भी ऋषि मुनिगण रहते थे उनके बीच में जाके बहुत शरारत करने लगे। ऋषि मुनि इतने हैरान हो गए इस बच्चे की शरारत से कि उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि तुम अपने शक्ति को भूल जाओगे, और तब तक तुम शक्ति को भूले रहोगे जब तक कि कोई तुम्हें अपनी तुम्हारी शक्ति का याद नहीं दिलाता है। तो हनुमान जैसे ही अपनी शक्ति को भूल गए तुरंत बहुत सौम्य और शांत हो गए, और सारे ऋषि मुनि भी जो हैं वो फिर अपने तपस्या करने में फिर से सक्षम हो गए। आराम से बड़े शांति के वातावरण में वो अपनी तपस्या जारी रख रहे थे। तो फिर आगे चलते चलते जब संपाति ने बताया कि लंका में सीता देवी निवास कर रही हैं, हनुमान जी उस समय थे वहां पर, उधर चर्चा ये चल रही थी कि हम लंका पहुंचे कैसे। अनेकों ने कहा कि हम तो इतनी दूरी तक नहीं जा सकते, हम तो बस इतने योजन छलांग मार सकते हैं, इससे अधिक हम नहीं छलांग मार पाएंगे। किसी ने कहा हम इससे दुगना कर सकते हैं फिर भी हम लंका नहीं पहुंच पाएंगे। वहां पे जांबवान भी थे। जांबवान ने कहा जब मैं जवान था तो मैं 14 बार सारे पृथ्वी का भ्रमण करने में के लिए सक्षम था, लेकिन इस समय मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैं केवल लंका तक पहुंच सकता हूं, लेकिन लंका से वापस आने की शक्ति हम में नहीं रहेगी। ऐसे अंगद ने भी कहा, अनेकों ने कहा, हनुमान ने एक शब्द नहीं कहा। फिर जांबवान हनुमान की ओर देखने लगे, अरे हनुमान तुम तो शांत हो, तुम चुप हो, ऐसे क्यों? तो हनुमान चुप रहे, हनुमान को याद नहीं था अपनी शक्ति का। फिर जांबवान ने याद दिलाया कि हनुमान तुम नहीं जानते तुम्हारी शक्ति कितनी है, तुम्हारे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति कहीं भी नहीं है यहां। मैं याद दिलाना चाहता हूं तुम्हें तुम्हारी शक्ति का। और जैसे ही हनुमान को याद दिलाया गया तो उनका शरीर बड़ा होता गया। उन्होंने अपने शरीर को बड़ा किया और इतने बड़े हो गए, एक बहुत बड़े पहाड़ के चट्टान के समय बड़े हो गए, बादलों तक उनका सर स्पर्श कर रहा था। तो सारे वानरों ने हनुमान के इस विशाल दृश्य को देखा, विराट रूप को देखा, तो जय जयकार करने लगे। अब रावण की हत्या निश्चित है, ऐसे घोषणा करने लगे हनुमान का इस स्वरूप को देखकर। जब देख लिया तो हनुमान जी अपने शरीर को और बड़े बड़ा बनाते गए। फिर हनुमान ने कहा, मैं तो आसानी से अब कूद के जाऊंगा, और कूदने की तैयारी करने लगे। जिस तरह से रॉकेट जब निकलता है तब उस समय काफी यहां प्रतिकार होता है, तो हनुमान जी जब तैयारी कर रहे थे कूदने के लिए तो सारी पृथ्वी कांपने लगी। और जब हनुमान ने छलांग लगाई महेंद्र पर ऊपर पर्वत के ऊपर जाके, तो वहां हजारों की संख्या में जितने भी पेड़ थे वो उखड़ गए, सब गिर पड़े। एक तूफान समझ गया वहां पर, बड़ी कठिनाई से इस तूफान का सामना कर दिया वानरों ने, और हनुमान उड़ते गए। और रास्ते में एक राक्षसी मिली। राक्षसी ने कहा कि मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दे सकती। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो ऐसा है, मैं राम की सेवा के लिए जा रहा हूं, तुम इधर छोड़ो। तो राक्षसी ने कहा कि ठीक है, मैंने मेरे पास जो आता है मेरे मुख के अंदर जाए बिना वो निकल नहीं सकता। तो राक्षसी ने मुख अपना खोल दिया, बहुत बड़ा मुख था। तो हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर बहुत छोटा कर दिया, उस राक्षसी के मुख के अंदर से आके फिर से बाहर आ गए। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई, मैं तुम्हारे मुख के अंदर आके अब चला भी गया। तो राक्षसी हार गई, फिर हनुमान जी आगे चले गए। हनुमान चले और फिर लंका में उन्होंने वो तहस नहस कर दिया। हनुमान जी वैसे बहुत बड़े विद्वान थे। जब किष्किंधा कांड में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि राम और लक्ष्मण पहुंचे थे ऋषिमुख पर्वत के पास में, तो सुग्रीव उस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर थे। दूर से देखा कि अरे हनुमान देखो देखो ये दो लोग आ रहे हैं। दिखने में तो वैसे ऋषि मुनि का वेश है इनका, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये तो क्षत्रिय की तरह दिख रहे हैं। तो जाओ देखो तो सही ये कौन है, कहीं ये मेरे भाई वाले की चाल तो नहीं है। इसका इतिहास ये है कि वाली और सुग्रीव के बीच में बहुत पुराना झगड़ा था। झगड़ा ये था कि वाली एक बार एक असुर से वध कर एक युद्ध कर रहे थे, और दोनों गुफे में गए, और काफी समय हुआ कि वाली बाहर निकले नहीं। सभी ने सोचा कि वाली की हत्या हुई होगी, तो उनके छोटे भाई सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठाया गया, परंतु वाली मरा नहीं था। वाली बाहर आया और वाली ने फिर सुग्रीव को बहिष्कृत कर दिया राज्य से। सुग्रीव तो बाहर चले गए। सुग्रीव ने सोचा कि मेरे प्रति अन्याय हुआ है, मेरे पत्नी का भी अपहरण कर लिया वाली ने। तो सुग्रीव ने आक्रमण किया कई बार, परंतु वाली ने परास्त कर दिया। वाली बहुत शक्तिशाली था। वैसे वाली की शक्ति का अनुमान देने के लिए बाद में सुग्रीव ने जाके हनुमान से बताया कि एक राक्षस था जिसका नाम था दुंदुभि, उसका वध वाली ने किया, और उसके कारण ये दुंदुभि का शरीर बहुत दूर जाके उड़ गया। इतना शक्तिशाली था ये वाली। लेकिन इसके खून के बूंद जो है वो आके एक ऋषि के ऊपर गिर पड़े यहां पर, जो तपस्या कर रहे थे ऋषिमुख पर्वत में। तो ऋषि ने श्राप दिया कि जिस व्यक्ति के कारण ये सब हुआ है, मैं श्राप देता हूं कि यदि वो यहां पैर रखे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर वो ऋषि ने उस शव को हटा दिया वहां से। लेकिन वाली को पता चल गया कि ऐसे शाप है, तो इसलिए वो ऋषिमुख पर्वत में गए नहीं। तो सुग्रीव को पता था ये कि ऐसे शाप ऋषि ने वाली को दिया है, और सुग्रीव डरते थे बहुत वाली से, इसलिए सुग्रीव जाके रहे ऋषिमुख पर्वत पे, क्योंकि वहां पे अनुमति नहीं थी वाली को प्रवेश करने के लिए। लेकिन फिर भी सुग्रीव सदैव भयभीत अवस्था में रहते थे, क्योंकि वाली इतने शक्तिशाली थे कि क्या करें, कुछ भरोसा नहीं था। तो जब राम और लक्ष्मण को आते हुए देखा तो हनुमान जी से कहा कि जाओ जरा देखो तो सही, ये कौन है, क्या प्रयोजन है इनका। तो हनुमान जी गए अपना वेश बदल के, एक ब्राह्मण के रूप में गए, और बहुत मीठे बोली से उनका स्वागत करने लगे, उनसे जिज्ञासा करने लगे कि आप कौन हैं और यहां आप किस उद्देश्य से आए हैं। जिस तरह से हनुमान जी उस ब्राह्मण के वेश में बात कर रहे थे, श्री रामचंद्र को पता चला कि ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति कोई भाषा बोलता है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का व्यक्ति है। हनुमान जी ने स्वयं सूर्य देव से विद्या प्राप्त कर ली थी। जब सूर्य अपने संवत्सर में चलता है तो हनुमान जी उनके साथ साथ चलते थे। विवस्वान भी बड़े पंडित हैं। आखिर भगवान कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं गीता में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वा कवे ब्रवीत, कि मैंने ये ज्ञान जो है भगवद गीता का सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो सूर्यदेव बहुत बड़े पंडित हैं, तो उन्होंने हनुमान जी को प्रतिदिन उपदेश दिए, और इसलिए हनुमान जी इतने बड़े पंडित बन गए। तो हनुमान जी के पांडित्य को समझ पाए राम, तो बड़े मधुर स्वरों से राम ने भी उत्तर दिया, और हनुमान जी ने फिर अपना सही परिचय व्यक्त किया और कहा कि मैं आपको फिर सुग्रीव के पास ले जाता हूं, आइए हमारे कंधों पर बैठिए। तो उनके कंधों पर बिठाकर वो सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव को मन में संशय था कि राम कैसे वाली को पराजित कर सकते हैं, क्योंकि जब राम की समस्या सुनी सुग्रीव ने कहा कि मैं अवश्य आपकी मदद करूंगा और सीता देवी को हम ढूंढ निकालेंगे। श्री राम ने भी कहा कि मैं भी आपकी समस्या को अब जान चुका हूं, मैं भी आपकी सहायता करूंगा, और आपका जो अधिकार है राजगद्दी पर बैठने का, मैं आपको तुरंत वो लौटा दूंगा। तो दोनों में यह समझौता, मैत्री मित्रता का संबंध या समझौता हो गया। उधर सुग्रीव के मन में अभी तक संशय था कि राम की शक्ति इतनी क्या है वास्तव में जितना कि हनुमान जी कह रहे हैं। तो राम से कहने लगे कि आप नहीं जानते वाले की शक्ति कैसी है, देखो दुंदुभी का शरीर यहां पे पड़ा है, दुंदुभी जैसे बड़े राक्षस का वध मेरे भाई ने किया था। तो श्री राम ने अपने चरण कमलों के अंगूठे से दुंदुभी के शव को 80 योजन दूर, अनेक योजन दूर लात मार के फेंक दिया हल्के से बस। फिर भी संशय मुक्त नहीं हुए सुग्रीव। फिर श्री राम ने अपनी तीर छोड़ दी, वहां 7 ताल वृक्ष थे, एक के बाद एक इन वृक्षों से बीच के चलते हुए वो तीर चलती गई नीचे जमीन में जाके वो रसातल पाताल आदि जाके फिर से लौट के आई, और फिर से वो तीर श्री राम के पास आई। तो जब सुग्रीव ने ये देखा तब वो संशय मुक्त हो गए कि हाँ अब हम जानते हैं कि राम हमारे लिए वास्तव में एक योग्य मित्र हैं, वो सक्षम हैं, समर्थ हैं। तो भी दोनों के बीच मैत्री का संबंध हो गया। काफी समय के लिए वो वहां रहे किष्किंधा में, आज भी आप किष्किंधा जाएं तो आप देखेंगे कि वहां के पहाड़ों का आकार कुछ विचित्र सा है, एक के ऊपर एक पत्थर लगे पड़े हैं। कभी कभी विश्वास नहीं होता कि ये पत्थर ऐसे कैसे रुका हुआ है, एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर। ऐसे लगता है कि कोई थोड़ा सा बस इसे स्पर्श करे तो गिर जाएगा, लेकिन ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से है जैसे कि प्रतीत होता है कि किसी ने जानबूझ के रखे हों। इसी प्रांत में वानर सेना घूमा करती थी, भ्रमण किया करती थी। तो वहां पर चातुर्मास्य के समय श्री राम रहे, क्योंकि चातुर्मास के समय विधि है कि भ्रमण नहीं किया जाता है। चातुर्मास के समय भी का अंत हुआ। वाले की हत्या तो राम ने कर ही दी थी, अब सुग्रीव अपने राजा के ऐश में भोग में पड़े रहे और श्री राम को क्रोध आया कि सुग्रीव अब अपने वचन को निभा नहीं रहे हैं। लक्ष्मण ने जाके भी उनको चेतावनी दे दी, तब सुग्रीव तैयार हुए। वो भूल गए थे अपने वचन को, अपने राजा के ऐश्वर्य में इतने मग्न हो गए थे कि अब दूसरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन लक्ष्मण की धमकी के बाद अब वो तैयार हुए। वैसे तो भगवान के भक्त थे ही, परंतु भगवान के भक्त भी कभी कभी थोड़े समय के लिए पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। संसार का भोग ऐसा होता है, संसार के आकर्षण ऐसे होते हैं कि कभी कभी विवेकी व्यक्ति भी पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधान रहना पड़ता है। तो खैर, सुग्रीव तैयार हुए साथ देने के लिए, और जब हनुमान जी ने खबर लाई लंका से लौटकर, फिर सारी सेना निकल पड़ी दक्षिण भारत की ओर। वहां पे रामेश्वर में सेतु बंध नाम के स्थान में वो रुके। श्री राम प्रतीक्षा कर रहे थे कि समुद्र देव यहां पर प्रकट हो जाएं, परंतु समुद्र देव आए नहीं। एक हफ्ते के बाद श्री राम को बड़ा क्रोध आया, तीर छोड़ दिए उन्होंने नदी में, समुद्र में। वहां प्राणी बहुत विचलित हो गए। समुद्र देव प्रकट हुए वहां पर, क्षमा याचना की। फिर समुद्र ने कहा कि आप इस तरह से यदि मेरे जल का भेद करके जाएंगे तो यह उचित नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इसलिए आप अवश्य मेरे ऊपर सेतु बनाइए। तो फिर श्री राम ने वानरों को कहा कि ठीक है, सेतु बनाओ। फिर वानर अब सेतु बनाना प्रारंभ कर दिए, जगह जगह से पहाड़ आदि लेकर आए, और जितने भी पहाड़ थे वो सब वो पानी में डालते गए। और अहो चमत्कार क्या होता था कि पानी में ये डूबते नहीं थे पत्थर, तो छोटे पहाड़ बड़े पहाड़, छोटे पत्थर बड़े पत्थर सब इधर उधर से लाते गए वानर सेना, और धीरे 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 से सेतु बनते गया। और बनते बनते जब हनुमान जी पहाड़ लाने के लिए इधर उधर जाया करते थे, यहां तक कि वो हिमालय तक भी गए, गोवर्धन तक भी गए। गोवर्धन में आप पहुंचे, जिसका वर्णन तो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। जब गोवर्धन के पास पहुंचे, गोवर्धन को उठाना चाहते थे, परंतु वो जानते नहीं थे गोवर्धन की शक्ति क्या है। गोवर्धन को उठा नहीं पाए। हनुमान जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, बहुत आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने गोवर्धन जी को प्रणाम किया और कहा कि मैं श्री राम की सेवा के लिए आपको ले जाना चाहता हूं। तब गोवर्धन को पछतावा हुआ कि अरे रे रे, मैं भूल गया, मैं जानता नहीं था, तो अवश्य मुझे आप ले जाइए। तब तक खबर पहुंची कि अब सेतु बंध गया है, अब यहां और किसी पत्थर की आवश्यकता नहीं है। तो गोवर्धन बेचारे बहुत बेचैन हो गए, दुखी हो गए कि अरे मैं वंचित रह गया, मैं भी भगवान की सेवा करना चाहता था, लेकिन अब वो अवसर खो बैठा। तो फिर हनुमान ने श्री राम ने हनुमान के द्वारा उनको संदेश भेजा कि कोई चिंता की बात नहीं है, अगले युग में, द्वापर युग में, मैं और लक्ष्मण हम आएंगे आपके पास, आपके ऊपर भ्रमण करेंगे। जब हम कृष्ण बलराम के रूप में आएंगे तब गोवर्धन थोड़े शांत हुए। फिर हनुमान लौट के चले गए और वानर सेना निकल पड़ी। लेकिन वानर सेना के निकलने के पहले उधर लंका में रावण को खबर मिलती जा रही थी। पहले तो हनुमान तहस नहस करके तो गए ही थे, तो थोड़ा बहुत भय रावण के हृदय में आ चुका था, क्योंकि एक वानर यदि ऐसा करे तो ये तो वानरों की सेना है, न जाने ये लोग क्या क्या कर पाएंगे। तो उधर जासूसों के द्वारा खबर मिलती रहती थी कि ये लोग सेतु बांध रहे हैं समुद्र के पार करने के लिए, यहां लंका आने के लिए। हनुमान रावण ने अपनी सभा बुलाई, काफी विस्तार में वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि क्या वार्तालाप था। और उस समय विभीषण ने बहुत सलाह देने का प्रयास किया श्री रावण जी रावण को, रावण ने एक नहीं मानी। रावण ने कहा कि तुम कहने के लिए तो मेरे भाई हो, परंतु वास्तव में तुम मेरे बहुत बड़े शत्रु हो, और इसलिए मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालना चाहता हूं। यदि तुम मेरे भाई नहीं होते तो तुरंत तुम्हारी हत्या कर देता इसी क्षण, तो चले जाओ यहां से। तो विभीषण को रावण के शब्द बहुत कठोर लगे, मानो कि कोई तीर उनको हृदय के आगे चुभे हैं। विभीषण ने कहा कि जो आपके मित्र हैं आप उनको नहीं पहचानते हो, और जो आपके मित्र की तरह बात करते हैं आपसे लेकिन आपके अहित के लिए बात करते हैं उनको ही आप मित्र समझ बैठे हो, कितने दुर्भाग्य की बात है। तो ठीक है, आप मुझे नहीं चाहते हो तो मैं यहां से निकल जाता हूं। तो अपने चार साथियों को लेकर विभीषण लंका से चल पड़े, आकाश पथ से होते हुए समुद्र पार कर गए। यहां राम जहां वानर सेना के साथ थे वहां पे आ पहुंचे। वहां पे जैसे ही वानर सेना ने देखा कि ये विभीषण रावण के भाई खड़े हैं आसमान के ऊपर, तुलंग छलांग मार के पकड़ के नीचे खींच के ले आए विभीषण को और गिरफ्तार कर लिया। और आपस में चर्चा करने लगे, चर्चा कर रहे थे। किसी ने कहा ये तो अवश्य जासूस होगा, कोई रावण ने भेजा होगा। किसी ने कहा हाँ हो सकता है केवल खबर निकालने के लिए किसी ने भेजा होगा। किसी ने कहा इसे स्वीकार करना चाहिए, किसी ने कहा नहीं करना चाहिए। अंततः इस वाद का समाधान करने के लिए सब श्री रामचंद्र के पास आए। जब रामचंद्र जी ने बात सुनी तो उन्होंने घोषणा की, एक बहुत महत्वपूर्ण वचन उन्होंने कहा, सकृत एव प्रपन्नो यह तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम ये तद्व्रतम मम। उन्होंने कहा सकृत एव, एक बार भी प्रपन्न यह, यदि कोई व्यक्ति मेरे शरण में आ जाता है तवास्मीति च याचते, तव अस्मि इति याचते, ऐसी याचना करके कि हे प्रभु तव अस्मि मैं आपका हूं, तो फिर अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, मैं ऐसे व्यक्ति को जो कि मेरे प्रति शरणागत है मैं सर्वदा अभयता प्रदान करता हूं, निर्भयता। एतद् व्रतम मम, और ये मेरा एक व्रत है। तो ये भगवान के गुण होते हैं, उनके लक्षण होते हैं। तो उन्होंने कहा कि विभीषण कुछ भी क्यों ना हो वो अब मेरे शरण ग्रहण करने आया है, इसलिए मैं अवश्य विभीषण को स्वीकार करूंगा। तो श्री राम की बातों को सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए, विभीषण भी प्रसन्न हुए। और फिर विभीषण ने कई महत्वपूर्ण सलाह दिए वानर सेना को, राम के रावण के शक्ति के बारे में जानकारी दी, राम की सेना के बारे में जानकारी दी, और विभीषण उसके बाद से हमेशा श्री राम के साथ में ही रहे। दूसरे शब्दों में भगवान की भक्ति करने के लिए कोई बाधा नहीं है कि इस योनि में जन्म लेना है या उस योनि में जन्म लेना है, इस जाति में होना चाहिए उस जाति में होना चाहिए, इस देश का उस देश का, इस भाषा का उस भाषा का, जाति भेद, देश भेद, धर्म भेद, किसी भी प्रकार का भेद नहीं है भगवान की भक्ति में। आखिर भगवान सभी के भगवान है। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल किसी एक प्रांत के लोगों के लिए हैं, एक कौम के लोगों के लिए हैं, एक जाति के लोगों के लिए है। नहीं, भगवान तो सभी के लिए है। और रामलीला में विशेष करके हम देखते हैं कि मनुष्यों के विविध जातियों की बात तो दूर है, अनेक योनियों के जो जीव हैं वो भी भगवान के भक्त बने। जटायु की बात तो हमने सुन ली, और ये वानर सेना, क्या श्री राम को ऐसे मनुष्य नहीं मिले कि उन्होंने वानर चुन लिए? वानर, भालू, ये सब भगवान के साथी थे उनके युद्ध में। श्री राम के सबसे कठिन से कठिन समय में साथ देने वाले कौन थे? वानर और भालू, ये सब भी भगवान के भक्त बने। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। किष्किंधा में प्रवेश करने के पहले थी शबरी, साथ में और अनेक ऐसे ऋषि मुनियों को भी वो मिले, वो सब श्री राम की शरण में आ गए। तो भगवान की भक्ति करने के लिए ऐसी कोई शारीरिक बाधा अवश्य नहीं है। तो हमारे लिए ये एक बहुत सुख की बात है। कहीं कोई व्यक्ति चिंतित हो जाए कि मैं इस जाति का नहीं हूं, उस जाति का नहीं हूं, या कोई व्यक्ति सोचे मुझे संस्कृत भाषा नहीं आती, या कोई कहते मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूं, इस दर्शन को सही समझ नहीं सकता हूं, लेकिन कोई बात नहीं। भक्ति के लिए आवश्यकता केवल श्रद्धा की है। यदि हम श्रद्धावान रहें और भगवान के प्रति अनुकूल सेवा की भावना हमारे हृदय में रहे, तो हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। बल्कि भगवान के शुद्ध भक्त बनना ही हम सबका कर्तव्य है। तो खैर, आखिर राम पहुंच ही गए लंका। भीषण युद्ध हुआ। युद्ध का वर्णन युद्ध कांड में वाल्मीकि जी करते हैं बहुत विस्तार में। अनेक दिनों तक युद्ध चला। प्रत्येक दिन में किस तरह का आक्रमण परस्पर एक दूसरे के ऊपर कर रहे थे, कौन से अस्त्रों का प्रयोग हुआ, कौन कौन घायल हुए, किन की मृत्यु हुई, सब ये सारा वर्णन वाल्मीकि मुनि करते रहे। लक्ष्मण जी घायल हो गए इंद्रजीत के अस्त्रों के द्वारा। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी जो औषधि है वो ले आए। लक्ष्मण पुनः जागृत हो गए और अंततः श्री रामचंद्र ने अपने तीरों के द्वारा रावण का वध कर दिया। जैसे जैसे वो रावण के सरों को काट डालते, वैसे वैसे ये सर पुनः प्रकट हो जाते। रावण के 10 सर थे। वास्तव में रावण का नाम था दशग्रीव। दशग्रीव अर्थात जिनके 10 सर हैं। और उनको ये वरदान मिला था कि जब भी एक सर काटा जाएगा ये सर उग जाएगा फिर से। इसलिए सर काटने से रावण का वध कभी नहीं हो सकता था। तो अंततः श्री राम ने रावण के वक्षस्थल में जब तीर छोड़ी, तब जाकर रावण का वध हो गया। फूलों की वृष्टि होने लगी देवताओं के द्वारा। देवलोक में बहुत सभी प्रसन्न थे कि अब सारे ब्रह्मांड के सुख के मार्ग में जो कांटा है, सबसे बड़ा कांटा रावण, वो अब निकल चुका है। रावण ने बहुत तपस्या की थी। अब तीनों भाई जो हैं, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण, तपस्या करने गोकर्ण में गए थे। बहुत लंबी तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए थे। तो पूरे 10,000 वर्षों तक तपस्या करने लगे। तपस्या करने के बाद अंततः ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा रावण से, तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? तो रावण ने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा रॉन्ग नंबर, क्योंकि मैं ऐसे वरदान नहीं दे सकता, मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तो तुम्हें कैसे मैं अमर बना सकता हूं। लेकिन रावण ने अपनी बुद्धि चलाई, रावण ने सोचा कि किसी न किसी तरह से मैं ऐसे वरदान प्राप्त करूं जिससे मैं प्राय अमर हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा मुझे राक्षसों के हाथों द्वारा, देवताओं के द्वारा, यक्षों के द्वारा, गुह्यकों के द्वारा, इनके द्वारा, उनके द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लेकिन रावण को इतना घमंड था कि रावण मनुष्यों का नाम लेने के लिए भूल गए, जानबूझकर नहीं लिया, क्योंकि वो सोच रहे थे मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, मैं तो राक्षस हूं और इतनी शक्ति मुझ में है तो ये भला क्या बिगाड़ सकते हैं मेरा। इतनी तपस्या की थी उन्होंने कि उनका शरीर प्राय पिघल गया था। ब्रह्मा जी के कमंडलों के में जो जल था उसको छिड़कने पर रावण का शरीर और तेजस्वी और शक्तिशाली और सुंदर हो गया। फिर रावण ने ऐसे अनेक वरदान मांगे तो ब्रह्मा जी तथास्तु कहते गए, सारी सिद्धियां भी मुझ में होनी चाहिए, योग सिद्धियां। ऐसे करते करते रावण फिर संतुष्ट हो गया। फिर उधर विभीषण के पास आए। विभीषण ने कहा मैं आपसे केवल एक वरदान चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में मैं अधर्म के पथ से हटू नहीं, पथ भ्रष्ट में कभी भी ना हो जाऊं, चाहे कितना भी प्रलोभन क्यों ना आए, कितना भी कष्ट क्यों ना आए मेरे जीवन में, मैं सदैव धर्म परायण रहूं, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है आपसे। तो देखिए दोनों भाइयों में कितना अंतर था। तो विभीषण की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तुरंत तथास्तु कह दिया। अब रहे कुंभकर्ण की बात। जैसे ही कुंभकर्ण की बारी आई देवतागण घबरा गए और आके गुप्त रूप से ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आपने रावण को ऐसे वरदान दे दिए, ये भी तो अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। अब रावण तो सारे ब्रह्मांड में बहुत उत्पात मचाएगा, अब कुंभकर्ण को भी ऐसे आप वरदान दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो ऐसे कोई तरकीब आप निकालिए जिससे कि कुंभकर्ण शक्तिशाली न हो जाए इतना। तो ब्रह्मा जी ने स्मरण किया, तुरंत उनकी पत्नी सरस्वती देवी जो कि विद्या की देवी हैं, वो प्रकट हुई उनके जीव पर। सरस्वती देवी ब्रह्मा जी की इच्छा को समझ गई। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से पूछा कि क्या वरदान चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण ने उत्तर दिया, वो कुछ मांगना चाहता था, मुंह से कुछ और निकल गया, क्योंकि सरस्वती देवी जो उनकी जीवा पर वास कर रही थी उस समय के लिए तत्क्षण। तो कुंभकर्ण पूछना चाहते थे मैं निर्देवत्वम चाहता हूं, अर्थात देवताओं के हाथों में कभी नहीं मारा जाना चाहता हूं, मैं देवताओं के अधीन कभी नहीं होना चाहता हूं, निर्देवत्वम। लेकिन मुंह से निकल गया निद्रावत्वम। तो जैसे ही निद्रावत्वम निकल गया मुंह से, तो ब्रह्मा जी ने एक क्षण भी बिना रुके हुए तथास्तु जल्दी से कह डाला। निद्रावत्तम मैं खूब सो जाऊं, ऐसे प्रार्थना की थी। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु जल्दी से। जैसे ही मुख से ये शब्द निकले कि कुंभकर्ण अपने आप को कोसने लगे, अरे ये शब्द मेरे मुंह से कैसे निकला, मेरी तो ऐसी इच्छा नहीं थी ऐसे वरदान मांगने के लिए, अब तो सर्वनाश हो गया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह भी दिया, अब क्या किया जाए, ये अवश्य कोई देवताओं की चाल है। इतना तो समझ गए कुंभकर्ण कि देवताओं की चाल है। और फिर उसके बाद कुंभकर्ण कोई ऐसे वरदान था कि वो साल भर सोएंगे, साल में एक दिन जागेंगे, तब खूब खाएंगे पिएंगे, फिर से सो जाएंगे। आजकल कुंभकर्ण के भी अनेक शिष्य हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन केवल सोने के लिए नहीं है, न स्वर्ण न निद्रा, दोनों। सोना मतलब सोना शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं ना। मनुष्य जीवन तो भगवान की प्राप्ति के लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वो 6 घंटे सोए बस, अधिक से अधिक ठीक है 7 घंटे, 8 घंटे से बिल्कुल ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा यदि कोई सोएगा तो वो साक्षात कुंभकर्ण है। एक बार हम रेलगाड़ी में जा रहे थे, ये घटना हम अक्सर सुनाया करते हैं। एक कॉलेज का विद्यार्थी था, सहयात्री था हमारे, तो आके ऊपर के सीट में सो गया। जैसे ही गाड़ी शुरू हुई वो जाके सो गया। लंबे सफर 24 या 28 घंटे की थी, इससे ज्यादा भी शायद। तो सारे धाम ने देखा कि तो सोया ही हुआ है, वैसे भोजन के लिए भी एक बार उठा नहीं। तब हमारे हृदय में थोड़ी चिंता होने लगी कि क्या ये मर तो नहीं गया ना, है ना। तो मैंने ऊपर जाके देखा कि सांस ले रहा है, तो मन थोड़ा शांत हो गया। फिर कई घंटे और बीत गए, ऐसे 8-10 घंटे बीत गए, हमसे रहा नहीं गया। हमने जगाया, थोड़ा खाओगे नहीं क्या, तो थोड़े चिढ़ के बोलने लगे, नहीं नहीं हम सो रहे हैं, जगाना नहीं है। और विश्वास कीजिए 24 घंटे वो व्यक्ति सोया रहा, 28 घंटे भी होंगे। हम आश्चर्यचकित रह गए कि लोगों की ऐसी भी शक्ति है। हमारा डर ये था कि कहीं अगले जन्म में इसको भालू का शरीर न मिल जाए, क्योंकि कर्म सिद्धांत जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत मांस खाना चाहता है तो माता प्रकृति कहती है कि मनुष्य शरीर जो है मांस खाने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये मांस ही खाना है तुम्हें, तो पशु का शरीर धारण कर लो, अगले जन्म में पशु बन जाओ तुम। उसी तरह से तुम खूब सोना चाहते हो तो मनुष्य जीवन तो सोने के लिए नहीं है, ठीक है अगला जन्म भालू का मिल जाए। जो भालू है वो बहुत सोते हैं, कभी कभी ऐसे भी भालू हैं जो 6 महीने लगातार सो जाते हैं। तो खैर, ऐसे कुंभकर्ण को वरदान मिल गया, और कुंभकर्ण को जगाने की पद्धति भी थी जो बहुत निराली थी, मानना चाहिए। वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि बहुत सारे लोग आए, जोर जोर से अपने वाद्य बजा रहे थे, शंख आदि तरह तरह के वाद्य बजाने के बाद भी कोई हाथी आए, उनको खींच रहे थे, उनको ऊपर प्रहार किया जा रहा था उठाने के लिए, लेकिन उठे ही नहीं। बहुत बहुत प्रयास के बाद, क्योंकि रावण चाहते थे कि कुंभकर्ण उठे, अभी ऐसी विकट समस्या है, अब सेतु बन गया और ये सब आ रहे हैं यहां पर, तो कुंभकर्ण को उठाने के लिए रावण ने प्रयास किया। बड़े मुश्किल से कुंभकर्ण जाग गए और उठे, तो रावण ने पहले से सारे मादक द्रव्यों का और मांस आदि का की व्यवस्था की थी, क्योंकि वो जानते थे कि रावण कुंभकर्ण उठेंगे तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे, और आगे उनके सामने ऐसे सब पदार्थ रहे तो थोड़े शांत हो जाएंगे। रावण को बुलाया गया, कुंभकर्ण को बुलाया गया दरबार में। रावण ने सभा में पूछा कि देखो ऐसी ऐसी समस्या है, तो आश्चर्य की बात है कि कुंभकर्ण ने भी डांटना शुरू कर दिया रावण को कि किसने कहा था तुमसे सीता का अपहरण करने के लिए, हमसे अनुमति लेकर गए थे, क्यों गए वहां, ऐसी ऐसी मूर्खता की बात क्यों की। लेकिन जब अब कर ही चुके हो ऐसे कुछ, हम तो तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, जब तक हम हैं आपको कोई चिंता नहीं है। इसके पहले अनेक सेनापतियों ने रावण का हौसला बढ़ाने का प्रयास किया था, रावण की बहुत स्तुति की थी, कि रावण आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है, आपके आंखों के इशारे से ही देवतागण कांपते हैं डर के मारे। आपको अब इस साधारण मनुष्यों की सेना से और वानरों की सेना से क्या डर है, आपके लिए विजय निश्चित है, आप चिंता नहीं कीजिए। तो फिर ऐसे बातें बोलते, उस समय विभीषण वहां थे, विभीषण के जाने के पहले की बात है, तो विभीषण अकेले एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने रावण को बहुत टोका। उस समय विभीषण को बाहर निकाल दिया रावण ने, तो कुंभकर्ण की बोलने की बात आई, तो कुंभकर्ण कहने लगा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। फिर रावण का हौसला बढ़ा, फिर भयंकर युद्ध हुआ। अनेक दिनों के बाद अंततः जब श्री रावण ने श्री रामचंद्र भगवान ने रावण का वध कर दिया, तो सीता देवी के पास गए, सीता देवी को वापस ले आए, वहां ले आकर अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा में सीता देवी ने साबित कर दिया कि वैसे वो बहुत शुद्ध थी। वैसे पद्म पुराण में एक रहस्यमय बात बताई गई है जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए हम उसको दोहराना चाहते हैं। यहां पर चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे तीर्थ यात्रा के लिए संन्यास लेने के बाद, तो वो एक स्थान में पहुंचे, वहां एक राम के भक्त थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। जब श्री राम वहां पहुंचे उनके घर में, तो उन्होंने देखा कि इस ब्राह्मण ने भोजन बनवाना शुरू ही नहीं किया है। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आपने मुझे भोजन के लिए निमंत्रण किया लेकिन भोजन की कोई तैयारियां नहीं हो रही हैं, कोई लक्षण हम देख ही नहीं रहे हैं। तो वो ब्राह्मण जो कि बहुत शुद्ध राम भक्त थे, अब भाव विभोर अवस्था में थे, वो बोल रहे थे कि मैं बहुत शोकग्रस्त अवस्था में हूं, रावण सीता देवी को उठाकर ले गए हैं, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने किसी न किसी तरह से बड़े कठिनाई से सांत्वना दी उस ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण शांत हो गए, फिर उन्होंने भोजन बनाना शुरू किया, फिर महाप्रभु को खिलाया। जब आगे चल के महाप्रभु दक्षिण भारत में और दक्षिण में गए, तो उन्होंने एक जगह ब्राह्मणों को इस कूर्म ये शास्त्र से इन श्लोकों को पढ़ते हुए सुना, तुरंत उसकी प्रति बनाई, उन्होंने प्रति बनाकर वापस लौटते समय उसी ब्राह्मण के घर में आए और उनको ये दिया कि देखो ऐसे ऐसे श्लोक हमने पढ़े हैं वहां पर। और इनमें क्या लिखा था, लिखा ये था कि जिस सीता देवी का अपहरण रावण ने किया वो असली सीता नहीं थी बल्कि वो माया सीता थी। रावण के सीता देवी का अपहरण करने के पहले अग्निदेव आए थे, अग्निदेव में वो प्रवेश कर गई थी सीता देवी और माया सीता प्रकट हुई थी। सिद्धांत ये है कि भगवान नारायण लक्ष्मी देवी के स्वामी हैं और लक्ष्मी देवी को स्पर्श करने का अधिकार केवल भगवान नारायण को होता है। शक्तिमान और शक्ति, लक्ष्मी देवी भगवान नारायण की शक्ति है, ठीक उसी प्रकार से श्रीमती राधा और कृष्ण, उसी प्रकार से सीता और राम, सीता देवी भगवान श्री रामचंद्र की अंतरंगा शक्ति है। तो सीता देवी को स्पर्श करने का अधिकार केवल श्री राम का है और किसी का नहीं। तो भले रावण जैसा दुष्ट व्यक्ति सीता देवी के शरीर का स्पर्श कैसे कर सकता है, सीता देवी को हाथ पकड़ के उठा के जबरदस्ती बलपूर्वक ले गया था रावण, तो क्या इसका मतलब है कि रावण सीता देवी के शरीर को स्पर्श कर पाया? उत्तर यह है कि नहीं कर पाए। जिस सीता का वो अपहरण करके ले गए थे वो माया सीता थी, पद्मावती। और आगे चल के जब लंका से लौट के आए श्री राम युद्ध के बाद, तो वहां जब अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि में से स्वयं असली सीता देवी को लेकर अग्निदेव आए और माया सीता फिर अग्नि में प्रवेश कर गई। तो जो असली सीता देवी हैं, जिनके स्वामी श्री रामचंद्र हैं, उनका स्पर्श रावण ने कभी नहीं किया। तो ये कथा जब चित उस ब्राह्मण ने सुने तो उनका मन तुरंत शांत हो गया कि ठीक है, मेरी आराध्य देवी सीता देवी का स्पर्श रावण ने नहीं किया, अन्यथा उनको हृदय में बहुत दुख हो गया था कि सीता देवी का स्पर्श ऐसे दुष्ट व्यक्ति ने कैसे किया। तो खैर, अग्नि परीक्षा हो गई। अब विभीषण ने कहा कि अब पुष्पक विमान में आप चलिए वापस अयोध्या। पुष्पक विमान वास्तव में कुबेर का था। कुबेर भी रावण के भाई थे, उनके पिता एक ही थे, माताएं अलग थीं। और ये पुष्पक विमान ऐसे विमान था कि उस विमान के मालिक के सोचने मात्र से वो प्रकट हो जाता था और जहां चाहे जैसे मन में इच्छा हो उस स्थान में चले जा सकता था। तो राम के इच्छा करने मात्र से पुष्पक विमान उनके सामने आ गया और लक्ष्मण सीता देवी आदि के साथ में वहां बैठे, साथ साथ में सारे वानर सेना भी उसमें आ गई। जितने भी वानर सेना घायल हो गई थी, बल्कि अनेकों की मृत्यु हो गई थी, उनको पुनः श्री राम ने जीवित कर दिया था केवल अपने दृष्टिपात से। अब ये सारी सेना जो है, जिनकी संख्या लाखों लाखों में थी, वो बड़े आसानी से उस पुष्पक विमान में बैठ पाए। जब पुष्पक विमान के अंदर बैठे हुए लोगों का वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं तो ऐसे नहीं बताते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ हो रही थी वहां। हमारे मन में ऐसे विचार या चित्र आ सकता है कि इतने लाखों लोग एक विमान में बैठे तो बहुत भीड़ हुई होगी, जैसे हमारे रेलवे ट्रेन में होते हैं बंबई में। परंतु ऐसे नहीं था, लाखों लोग बड़े आराम से आसानी से बैठे उस पुष्पक विमान में। और फिर वह पुष्पक विमान उड़कर चली गई सीधे फिर नंदीग्राम की ओर। नंदीग्राम में जब भरत को पता चला कि अब मेरे प्रभु श्री राम वापस आए हैं, तो बड़े आनंद हर्षित होकर वो तुरंत बाहर आए, राम का स्वागत किया और सारे अयोध्या नगरी में, बल्कि सारे प्रांत में खुशियां मनाई जाने लगी। दशहरा के दिन उन्होंने रावण का वध किया था श्री राम ने, और दीपावली के दिन अयोध्या में प्रवेश पुनः किया। हर घर में दीप आदि प्रज्वलित हो गए थे और ऐसे समय श्री राम ने प्रवेश किया, उनका राज्याभिषेक हुआ और इसके बाद उन्होंने 11,000 वर्ष राज्य किया, राम राज्य रहा। इस बीच में किसी एक व्यक्ति के कहने पर राम को पुनः सीता देवी को वनवास में भेजना पड़ा। इस समय लक्ष्मण जी सीता देवी को लेकर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए, वहां पर लव और कुश का जन्म हुआ और लव और कुश ने फिर रामायण की कथा वाल्मीकि मुनि से सुनी और जगह जगह जाकर ये कथा कहने लगे। और कथा हमने प्रारंभ वहीं से की थी कि लव और कुश श्री राम के दरबार में बैठ के ये रामायण की कथा कह रहे हैं। फिर राम और लव और कुश को उन्होंने पुनः स्वीकार किया। 11,000 वर्ष ऐसे बीते, सारे पृथ्वी का बोझ लव और कुश के बीच में बांटकर फिर समय आ गया था कि श्री राम जिस उद्देश्य से प्रकट हुए थे वो अब पूर्ण हो चुका। तो उत्तरकांड में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनका वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने कई रहस्यमय संदेश भेजे, जिससे कि श्री राम को पता चला कि ब्रह्मा जी कहना चाह रहे हैं कि अब हे प्रभु, जिस उद्देश्य से आप यहां प्रकट हुए थे हमारे निवेदन पर, वो पूर्ण हो गया है, अब आप कृपा करके अब स्वधाम लौट जाएं। तो श्री रामचंद्र ने ठान ली कि अब मैं स्वधाम लौट जाऊंगा। साथ साथ में ऐसे वाल्मीकि जी कहते हैं कि अयोध्या के जितने भी निवासी थे, श्री राम के साथ साथ आध्यात्मिक जगत में, भगवान के वैकुंठ जगत में चले गए। वैसे उत्तरकांड में बहुत अन्य कथाओं का भी वर्णन है, तरह तरह से, जैसे रावण का इतिहास है, रावण का नाम कैसे पड़ा, रावण को क्या श्राप मिले थे। अनेक लोगों ने रावण को श्राप दिए थे कि तुम यदि किसी स्त्री का बलात्कार करना चाहोगे जबरदस्ती, तो फिर तुम्हारा सर फूट जाएगा, तुम्हारी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। अनेकों से ऐसे श्राप मिले थे, इसलिए रावण ने बलपूर्वक सीता देवी के साथ नहीं रहा था, केवल छीन को उनको ले गए थे लंका में, परंतु वहां की वहां सीता देवी को धमकी देते देते भी वो कुछ कर नहीं पाए थे, क्योंकि ये श्राप था। तो इन सब चीजों का वर्णन और अनेक घटनाओं का वर्णन भी उत्तरकांड में आता है। तो ऐसे ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के साथ कांड हैं। वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर ढंग से, भक्ति भाव से रामलीला का वर्णन किया, और रामनवमी के अवसर पे हम भगवान श्री राम के सुंदर लीलाओं को का श्रवण करके उनके चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमारे हृदय में उनके प्रति शुद्ध भक्ति जागृत हो जाए। आज उनका जन्म दिवस है। जन्म दिवस पे कोई साधारण व्यक्ति भी बहुत उदार दिल का हो जाता है, तो भगवान का जन्मदिन है, तो भगवान श्री राम के चरणों में हमें ऐसी कृपा याचना करनी चाहिए। तो आप सब इतने शांति से, इतने धीरज से, श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण करते आए हैं, आप सबको हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि श्रोतागण नहीं हो तो वक्ता बेचारा करेगा क्या, और श्रोता होने पर भी यदि वो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो वक्ते भी कहने के लिए प्रेरित नहीं होंगे कि आप सब इतने श्रद्धा से, ध्यान से इस कथा को सुन रहे हैं और कुछ दो शब्द श्री रामचंद्र के गुणगान में कहने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया, उसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ साथ श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर के भक्तों को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी सुंदर व्यवस्था की है, और आगे चल के भी अब रामनवमी महोत्सव अभिषेक आदि के द्वारा मनाया जा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।